ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वयं प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में नित्य प्रति प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम चल रहा है। अब प्रस्थानोत्तरी ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल तक द्वितीय अध्याय में से तैयार हो गया था, चौवालीसी चलेगा, चतुश्चत्वारिश श्लोक चलेगा। जो कामात्मा न है स्वर्ग पर, स्वर्ग ही सब कुछ है और कुछ विशेष नहीं, सुख भोगना कर्म करते हैं। कर्मकांड में वेद में बहुत बड़े कर्मकांड है जिसमें बहुत यज्ञ आदि का विधान किया गया। स्वर्ग आदि के उद्देश्य से विभिन्न फल के लिए विभिन्न कर्मों का विधान, उसका वेद का तात्पर्य नहीं कर्म करके फल भोग करे, अपितु बहिर्मुख प्रवृत्ति को रोक करके शास्त्रीय प्रवृत्ति पर लाना, निषिद्ध कर्म छोड़ करके विहित कर्म करना। सुख चाहते हैं तो पर धन अपहरण करना, पर को कष्ट देना, हिंसा करना, ये साधन नहीं है, सुख साधन नहीं है, ये तो पाप फिर बहुत दुख का साधन है। नहीं समझने से, नहीं जानने से ऐसे दिखता है, दूसरे धन ले गया तो अपने पास धन आ गया, सुख से रहेंगे, दूसरे धन अपहरण करते हैं, दूसरे को कष्ट देते, दूसरे को अपमानित करते हैं, उसमें अपने को लगता है हम बड़ेपन है, दूसरे को नीचा करने से हम बड़े हो जाएंगे। ये सब निषिद्ध कर्म से रोक करके शास्त्रीय मार्ग पर चलाना, यही तात्पर्य है। पहले सत्कर्म करे, भले ही सकाम से करे, कामना पूर्वक करे, किन्तु वास्तव तात्पर्य नहीं कामना से कर्म करे और स्वर्गवादी फल भोग करे, इसमें तात्पर्य नहीं है। परम तात्पर्य है जितने शास्त्र भीत कर्म वो निष्काम होकर करे, इसका नाम होता है कर्मयोग। फल की इच्छा नहीं रह करके कर्म अनुष्ठान करे, ईश्वर अर्पण बुद्धिया अपने कर्तव्य समझ करके करे। जब ऐसे निष्काम कर्म करता है वह कर्मयोग ज्ञान योग का उपाय अथवा साधन होता है, और वो ज्ञान योग से आरूढ़ होने के बाद फिर ज्ञान प्राप्त करेगा वेदांत श्रवण करके। किंतु जब तक अंतगुण शुद्ध नहीं होता है तब तक वैराग्य नहीं होता है, जिज्ञासा नहीं होती है। जिज्ञासा नहीं होने से वेदांत श्रवण करने के लिए अधिकारी नहीं हो पाता है, श्रवण करने पर लाभ नहीं होता है। इसलिए पहले योग्यता होने के लिए निष्काम कर्म उपासना आवश्यक है, भक्ति उसके अंतर्भूत है। कर्म उपासना दोनों, भक्ति उपासना भी मानस कर्म है, और इससे अंतगुण शुद्ध हो, जिज्ञासा हो, वेदांत श्रवण करे तो आगे जो भक्ति है अद्वैत चिंतन वो भी भक्ति है, ज्ञानी की भक्ति अलग है, तो भी भक्ति के अंतर्गत वह भी आ जाता है। चार प्रकार भक्त में से अर्थो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भक्त, अर्थी जिज्ञासु नहीं, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी च भक्त, आर्त पीड़ित जिज्ञासु और अर्थ धन चाहने वाले और ज्ञानी भी, चार प्रकार। तो जो भोग ऐश्वर्य में जिनका मन है काम परक होते हैं वो कर्म करने वाले बहुत शब्द कहते हैं, किंतु जो भोगासक्त रहते हैं उनमें ये अंतकरण में क्या करना चाहिए क्या वास्तव कर्तव्य दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है, भोगासक्त अधिक रहने पर ये भगवान कहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख साक्षात्कार। सुख साक्षात अनुभव भी भोग है, दुख अनुभव भी भोग है। ऐसे दुख भोग को भोग शब्द से नहीं कहते, भोग करते मतलब सुख विषय भोग करते हैं। ऐश्वर्य ईश्वर के भाव धर्म ऐश्वर्य प्रभुत्व, ये जो भोगेश्वर्य में जो आसक्त रहते हैं, हम भोग करें सुख भोग करें सुख से रहे, ऐश्वर्य है हमारे पास अधिक सामर्थ्य हो, हम बड़े हो, सब लोग हम सम्मान करें, हमारी बात माने, हमारे प्रभुत्व हो, इसमें जो मन प्रसन्न रहता है, जिनका मन इस प्रकार होता है वो तद्रूप हो जाने पर तो क्या होता है, उनके लिए जो क्रिया विशेष बहुला वाणी कर्म का निभाया, ये वाणी सुन करके तया अपहृत चेत शाम, उसी वाणी के द्वारा उनका चेत अपहृत हो जाता है। जब भोग ऐश्वर्य में युक्त है आसक्त है, कोई कहेगा वेद वाक्य ये कर्म करने से फल मिलेगा, ये कर्म करने से फल मिलेगा, इस कर्म करने से इतने हजार वर्ष स्वर्ग में रहना, तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो कर्म करने की इच्छा होती। वो सामान्य लोग में तो ऐसे करने से ये मंत्र जपो धन मिल जाएगा, ऐसे करो चमत्कार तुमको आ जाएगा, ऐसे करो विख्यात हो जाएगी, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तया अपहृत चेतताम, अपहृतम चेत ये शाम, चित्त अपहृत हो जाता है कि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, जहां भोग की संभावना प्राप्ति है सुनते ही हम भी उधर जाए, हम भी इसको प्राप्त कर ले, ऐश्वर्य के है संभावना सिद्धि आदि प्राप्ति के, तो ऐसा करने हमको भी सिद्धि मिल जाए। सिद्धि मिलकर क्या करना है, आकाश उड़ने का सामर्थ्य आ जाएगा, अनिमा लक्ष्मा सामर्थ्य प्राप्त कर ले, दूसरे मन को मन की बात को जान ले, बड़ा जान भी इसे जान ले, कोई दूसरे मन की बात बता देता है बहुत बड़े सिद्ध बहुत बड़े महापुरुष बड़े ज्ञानी, कभी लगता है कि हमको इसे आ जाए, ये सब उसके द्वारा क्या होता है, चित्त अपहृत हो जाती है। जो भोग में ऐश्वर्य में आसक्त होता है, मन उस तरफ होता है, मन उधर ढालू है उधर मन नीचे, तो वो क्या करता है, भोग ऐश्वर्य आदि सुनने पर वो वाणी सुन करके मन खींच जाता है, मन उधर भाग जाता है। तया अपहृत चेत सायाम, ऐसा जिनके आया चित्त ऐसे अपहृत हो जाता है उनसे वाणी सुन करके, यजेत सर्ग काम, कोई का इस कर्म करने से ये फल मिलेगा, उधर जाने पर इतने सुख मिलता है, ये कर्म जप ये मंत्र जप कर इतने आनंद मिलेगा, इतने सुख मिलेगा, इतनी संपत्ति मिलेगी, इतनी ख्याति मिलेगी, इतनी सिद्धि मिल जाएगी, सुनने पर मन उधर खींच जाता है। मन जब उधर बहिर्मुख हो जाता है, समाधु व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, समाधि शब्द का ही अर्थ अंतकरण, समाधि अत्यस्मृति समाधि, जिसमें सारे कुछ पुरुष भोग के लिए सब स्थापन करते है, अंतकरण है समाधि। भाष्य में दिया समाधि अस्मिन पुरुष उपभोग है सर्वम, पुरुष भोग के लिए सब कुछ है, उसमें कर्म भी रहता है पुण्य पाप कर्म, विषय की वासना रहती है अंतकरण में, और सब कुछ अंतकरण में चिंतन करता है साधन करता है, इसे समाधि हो गया अंतकरण। अंतकरण में व्यवसाय आत्मिका बुद्धि न भवती, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। निश्चयात्मिका बुद्धि दो, एक तो ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग, ये कर्म हम करना अंतकोण शुद्ध हो जाए तो ज्ञान योग में आरूढ़ होंगे, ये उपासना करके भक्ति करके अंतकोण शुद्ध हो जाए परमात्मा प्राप्त करेंगे, इस प्रकार निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। सुनने पर भी मन खींच जाता है उधर, हाँ इस करेंगे हमको भी सिद्धि मिल जाए, इसे करेंगे तो हमको धन मिल जाए, सुनते है वेदांत स्वर्ण वैराग्य उनसे ज्ञान होगा, और कोई कहा ये मंत्र जप करो तो बहुत धन मिल जाएगा, बैठा है जो सुन रहा है ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष मिलेगा वैराग्य होने पर, इधर कहते ये मंत्र जप करो तो बहुत रुपया मिल जाएगा, जिस भोग ऐश्वर्य वैराग्य नहीं तो मन कहाँ खींच जाएगा, इधर अभी भाग स्वाभाविक ही, वैराग्य हो जाना कठिन है, वैराग्य हमको भी वैराग्य प्राप्त करना, हमको भी ज्ञान प्राप्त करना, ये भी सोचते हैं, अब सुनता ये जप करेंगे तो इतने बहुत जल्दी धन मिलेगा, भागा उधर चलो हम भी जप करेंगे हमको मिल जाए, चित्त अपहृत हो जाता है, तो इधर ये दृढ़ निश्चय नहीं होता हम भी इसे करेंगे, ऊपर से बोलते हम करेंगे हम भी साधना करेंगे हम भी साधना करेंगे, किंतु उधर मन खींच जाता है, इसलिए उनके लिए बुद्धि स्थिर नहीं होती। कर्मयोग ज्ञान योग किसी में भी स्थिर बुद्धि नहीं होती, अंतकरण बुद्धि नहीं होती, नहीं होता। आगे विवेक बुद्धि नहीं, दृढ़ निश्चय नहीं होने पर आगे प्रवृत्ति नहीं होगी। श्लोक बोलो। ऐसा होने से अंतकरण में दृढ़ निश्चय नहीं होता है कि हम निष्काम कर्म करें, ईश्वरार्पण बुद्धिया और शास्त्र श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करें, ये भावना नहीं आती। जहां भोग ऐश्वर्य सुख सम्मान सिद्धि चमत्कार उधर मन खींच जाता है तो मन में निश्चय नहीं हो पाता है। थोड़े थोड़े आत्म कृपा पहले होने पर ही ईश्वर कृपा होती है। थोड़े थोड़े साधन करते हैं, परमात्मा का दर्शन हम करें, संसार के विषय में थोड़ा विचार हो, ऐसा होने के होने पर जो भोग में आसक्ति है वो आसक्ति थोड़ी कम हो। विचार करने पर देखे भोग तो बहुत करते करते भी कोई तृप्त हुआ नहीं है। बहुत भोग करने के बाद फिर भी भोग करने में तृप्त हो गया कोई नहीं, और भी चाहिए और भी चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा आसक्ति हटे तब इधर श्रवण करने से कुछ थोड़ा ग्रहण होता है। निष्काम जब सात उपनिषद में आया, परिच्छलोकान कर्म चितान ब्राह्मण निर्वेद में आयत नास्त्यकृत कृतेन, कर्म फल की परीक्षा कर विचार करके देखे, कर्म फल प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा तो पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। धन बहुत इकट्ठे हो जाए तो खर्च होकर समाप्त हो जाता है, और नहीं कमाएगी तो धन खत्म हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी कर्म से प्राप्त होगा वो अनित्य होता है, नित्य नहीं होता है। नित्य सुख चाहते हैं तो तद विज्ञानार्थम गुरु में जानना पड़ता है। वैराग्य हो जाए नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन का अर्थ कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं होता है। नित्य फल प्राप्त करना है तो कर्म से नहीं होगा, कर्म फल अनित्य है। यही से विचार करके फिर निष्काम कर्म करता है अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। इसलिए भगवान कहते ऐसे यदि काम में आसक्त विषयासक्त होगा लाभ क्या होगा, मन उधर ही चलता रहेगा, संसार बढ़ता ही जाएगा। आगे वही कहते क्या लाभ होगा, यदि भोग ऐश्वर्य में आसक्त मन रहे तो क्या होगा, तो मन उधर चल जाएगा, आगे वही संसार जन्म मन संसार चलता रहेगा। वेद में भी कर्मकांड में भी कर्म का कथन किया गया, यदि स्वर्ग आदि सुख चाहते हो तो ऐसे ऐसे कर्म करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये तो प्रसिद्ध है तीन गुण सत्व रजतम, तीन गुण है। त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मिका माया है, उसका कार्य सब त्रिगुणात्मक है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरते, तीन गुणात्मक होने से उसका कार्य सब त्रिगुणात्मक है। ये संसार त्रिगुणात्मक है, उसको विषय करने वाला वेद है। वेद उसी को ही वही संसार प्राप्ति के लिए साधन बताएगा वेद कर्मकांड में। जितने कर्मकांड में संसार ब्रह्मलोक तक प्राप्ति का साधन बताएगा तो संसार प्राप्ति का साधन है। वेद त्रैगुण विषया, त्रैगुण त्रिगुणात्मक संसार को विषय करने वाले, उसको ही प्रकाश करने वाले, उसके साधन बताने वाले वेद है। किंतु तुम हे अर्जुन निस्त्रैगुण्य भव, ये त्रैगुण संसार की इच्छा नहीं कर, निष्काम हो जाओ। निस्त्रैगुण्य भव का अर्थ निष्काम हो जाओ। सारे वेद कामना के विषय, सारे संसार को बताने वाले सब त्रिगुणात्मक संसार को बताने वाले वेद है कर्म कांड। तुम ये निष्काम हो जाओ अर्थात ये वेद प्रतिपाद्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करना ये सब छोड़ करके निष्काम हो जाओ, क्योंकि यहाँ संसार का मूल कारण शोक मोह, उसकी निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति के बिना अज्ञान से ही है, ब्रह्मज्ञानी के बिना नहीं होगी। ब्रह्मज्ञान में अवतरण करने के लिए पहले कहते तुम निस्त्रैगुण्य भव निष्काम हो जाओ, पहला यह उपदेश है। सारे कर्म पहले बता दिया, कर्मयोग में युद्ध करने के लिए कर्म करो, निश्चित जीते जाने पर राज्य, हार गए तो स्वर्ग मिलेगा, विभिन्न प्रकार कह करके कर्म में अपने आश्रम भी तो कर्म में लगाने के लिए कहा। और अभी बाद में कहा ये कर्म करते समय लाभालाभ जया जय इत्यादि सब बराबर कर, बराबर शीतोष्ण आदि सहन करो, द्वंद्व सहित अपने कर्तव्य करो, और अपने धर्म विचार करके भी अपना धर्म करो। धर्म करते करते धीरे धीरे आगे कर्म विषय में बताया, ज्ञान तो अभी ऐसा ते भीता सांख्य ज्ञान पारमार्थिक आत्म तत्व नित्य होने से उनके मरण के कारण जो शोक मोह करते उसको त्याग करने के लिए बता दिया। और आगे जो कर्म कांड में आया, धर्म अपने धर्म सोच करके तुम युद्ध करो, ये जो कहा गया ये तो अपने शास्त्रीय मार्ग पर चलाने के लिए कहा गया, ये उद्देश्य नहीं कि कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करो। ये आगे तुरंत कहते ये वेद सब त्रिगुणात्मक संसार को बताने वाले, तुम तो निस्त्रैगुण्य हो जाओ, निष्काम हो जाओ। यही वेद का तात्पर्य, निष्काम होकर के कर्म करे, पहले कर्म में लगा दिया, बाद में भगवान क्या कहते निष्काम हो जाओ। निष्काम कैसे करेंगे, सुख दुख शीत उष्ण निंदा स्तुति मिलती तो उसका, शीत है तो शीत से बचना पड़ता है, निंदा कहीं करते तो निंदा कैसे नहीं करे, मान अपमान होता है ये कैसे, ये तो सोचना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते निर्द्वंद्व भव, द्वंद्व शब्द से इसको ही लेना है, द्वंद्व शब्द से विरोधी, सुख दुख, सुख दुख का साधन है, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत, द्वंद्व दो है, विरोधी दो पदार्थ, कभी शीत कभी उष्ण, शीत काल में शीत साधन, शीत से बचने के लिए साधन आवश्यक होता है, वो गर्मी काल उष्ण काल में गर्मी से बचने के साधन, तो ये जो शीत उष्ण का साधन हेतु है, शीत काल में शीत जिससे होता है अधिक ठंडी उसे बचते हैं, गर्मी के समय गर्मी से बचते, धूप आदि से बचना पड़ता है, ये द्वंद्व शब्द से सुख दुख का साधन जितने है सबको द्वंद्व शब्द से लेना, शीत हो उष्ण हो निंदा स्तुति मान अपमान ये सब जितने ये सब है द्वंद्व शब्द, उसे निर्गत हो जाओ, इसको छोड़ो, जो जैसे समय में प्राप्त होता है जितने करना प्रतिकार थोड़े करके अपने सहन करके अपने मार्ग पर रहो डटो। किंतु द्वंद्व जो शीत उष्ण सुख दुख उसके साधन उसे तो बचने के लिए समय तो उसी में लग जाता है, कैसे उसको छोड़ देंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे कैसे, द्वंद्व रही तो कैसे हो जाएंगे। सुख दुख साधन जो प्राप्त होता है, दुख साधन मिला तो उसे बचना चाहिए, सुख साधन मिला तो इकट्ठी करना पड़ता है, सुख साधन इकट्ठी करना पड़े करते हैं, कहते इतने नहीं चलेगा, इसको करने के लिए क्या चाहिए, नित्य सत्वस्तो भव, सत्वगुण में स्थिर हो जाओ, रजोगुण तमोगुण में स्थित होने पर, रजोगुण अधिक होने पर सुख दुख साधन इसमें दिन भर जीवन भर चल जाता है। जो रजोगुण अधिक बढ़ेगा वो भोग करने की इच्छा होगी, प्रवृत्ति होगी, सुख साधन के इकट्ठी करो, दुख साधन को दूर करो, यही करते कर एक दिन नहीं, एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन महीना वर्ष सारा जीवन इसे चल जाता है। ये कहते नित्य सत्वगुण में स्थित हो जाओ, नित्य सत्वस्थ सत्वगुण में आश्रित हो जाने पर ये रजोगुण तमोगुण के कार्य को छोड़ करके सन्मार्ग में चलेगा, भक्ति उपासना कर सकता है, विवेक विज्ञान होता है, ये सत्वगुण का कार्य। नित्य सत्वस्थ हो जाओ, सत्वगुण में स्थित कैसे हो जाएंगे, अभी जो हमको प्राप्त करना है उसके लिए प्रयत्न करते हैं, जो प्राप्त हो गया धन संपत्ति और उसकी रक्षा करेंगे, इसमें समय चल जाता है, सत्वस्थ कैसे होंगे, कोई विरोधी आ गया तो उसको नहीं विरोध करते हैं, कोई हमारा धन ले लेगा तो हम बचाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं निर्योग अक्षम हो, योग क्षम चिंता छोड़ दो। भगवान कहते योग क्षम मेरे पर छोड़ दो। भगवान का भक्त आप है ना, भक्त भगवान के ऊपर विश्वास करेगा? भगवान कहते योग क्षम मैं वहन करूंगा, तुम अपने चिंता अपने कर्तव्य करो। ये तो बड़ा कठिन किंतु मार्ग वही है। भगवान कहते इधर आना है तो योग क्षम चिंता छोड़ दो। योग क्षम चिंता जो करते रहेगा तो आगे योग क्या है? अप्राप्त प्राप्त करना, प्राप्त करना योग, अक्षय में रक्षा करना, जो अपने प्राप्त है उसकी रक्षा करना। भगवान भाष्यकार यहाँ कहते योग क्षम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा। जो योग क्षम प्रधान है यही करता रहता है, श्रेय मार्ग में उसकी प्रवृत्ति कभी नहीं होगी। यही सारे सबके जीवन में हो जाता है। इसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, उसके बाद हम साधन करेंगे। थोड़ा सा बाकी इसको कर देंगे, उसके बाद साधन करेंगे। ये क्या है? योग। ये अप्राप्त से प्राप्त, कुछ प्राप्त नहीं उसको प्राप्त कर लेंगे, इतने हो जाएगा, उसके बाद हम साधन करेंगे। फिर जो मिला है उसके थोड़े व्यवस्थित कर लेंगे, प्राप्त से संरक्षण। जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करना बाकी है, थोड़ा सा इसके बाद हम सब साधन करेंगे पूरा। कोई आगे बढ़ दे थोड़ा सा, दो चार साल बाकी हमारे नौकरी, उसके बाद हम आ जाएंगे संन्यास लेंगे। अब दो चार साल क्यों, और थोड़ा रुपया कमाने के बाकी है। फिर बाद में कैसे छोड़कर आ गया एकदम, कितने विरत कहाँ छोड़ दिया, सौ लड़के को दे दिया और किसको दे दिया, सौ छोड़ दिया, कितने विरत देखो। अब छोड़ने क्या, तो लड़के को देना ही था, पत्नी को दे दिया, उसको दे दिया, और मेरे पास था उसका नाम कर दिया एकदम मेरा विरत। फिर कोई आए तो संन्यास लेने के लिए पूछा, अब ये जो क्षेत्र में देखो साधु को जा रहे हैं, देखो ऐसा रास्ता ऐसे खड़े होकर के बिछा मांगकर भोजन कर सकते हो? हो सकता था हम ऐसे ही आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, भोजन आपके साथ करेंगे। मैं क्या ऐसे ही भोजन करना पड़ता है संन्यास लेने पर? अभी वो तो संन्यास लेना था, ऐसे का ऐसे रोटी खा सकते हो तो संन्यास लेंगे। एक साल रहो सफेद वस्त्र हम दे देंगे, और यहाँ रहो ऐसा हो देखो कैसे भोजन, तब संन्यास लेना। वो फिर भाग जाते हैं। वो सोते ही जैसे हम कहीं जाते हैं तो सन्मानसी को खिलाते बुला करके, वो देखते हैं कि हम भी स्वामी जी के साथ रहेंगे तो हमको ऐसे भोजन मिलेगा, असुविधा रहने के लिए एक घर झंझट और धन संपत्ति को छोड़कर चले जाएंगे। तो इतने दिन के बाद हम करेंगे ये प्राप्त करना, ये बाकी काम इसको कर लेंगे, फिर साधन करेंगे, फिर सब होने के बाद थोड़े सुरक्षा कर देंगे, उसके लिए थोड़ा व्यवस्था कर ले, उसके थोड़ा व्यवस्था कर देंगे, लड़के थोड़ी व्यवस्था करेंगे, उसके व्यवस्था कर दे, लड़की की शादी करा देंगे, उसके बाद साधन करेंगे। क्या भगवान कहते निर्योग क्षेम, भगवान भाष्यकार कहते योग क्षेम प्रधान से। योग क्षेम तो थोड़ा करना पड़ता है, किन्तु जन मुख्य वही हो गया, श्रेय मार्ग में प्रवृत्ति दुष्करा। इसलिए क्या करना है? निर्योग क्षेम भगवान। उसके बाद कहते योग क्षम कैसे छोड़ेंगे? कहते आत्मवान भव। आत्मवान आत्मा तो सौ के, किन्तु अप्रमत्त हो, प्रमाद रहित हो। प्रमाद होता है, करेंगे हम भी करेंगे, किन्तु प्रमाद करते थोड़े से प्रमाद। और दीर्घ सूत्र, दीर्घ सूत्र के जो अभी करना है आगे करेंगे भी, फिर थोड़े साल दो साल के बाद, दस साल के बाद हम पूरा छोड़ देंगे। वो कहते कोई जाकर के हम बिल्कुल आकर के तपस्या करेंगे, बारह साल तक तपस्या करेंगे। ये आगे करेंगे, आगे करेंगे ऐसे कहने वाले बहुत ही। समय अभी क्यों नहीं कर दो? जो समय अभी चला गया उसके लिए सोच, जितने समय चला गया अभी। भगवान भाष्यकार कहते निज गृहात पूर्णम विनिर्गम्यता, शीघ्र भागो यदि परमात्मा प्राप्त करना। ये कहते पहले निष्काम हो जाओ, निष्काम होने के लिए पहले निर्द्वंद्व द्वंद्व रहित तो हो जाओ। द्वंद्व रहित तो कैसे होंगे? नित्य सत्व में स्थित हो जाओ। सत्वगुण स्थित के बिना नहीं होगा, और सत्वगुण स्थित कैसे होगा? योग क्षम चिंता छोड़ दो। योग क्षम चिंता थोड़ी होती, प्रमाद होता है तो प्रमाद का त्याग करो। प्रमाद मृत्यु, प्रमाद को मृत्यु कह दिया। इसलिए अपने अनुसार धर्म अनुसार करें, ये उपदेश भगवान कहते हैं। इतने उपदेश करते हैं, इसके अनुसार चलेंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ज्ञान प्राप्त होने पर सब कुछ फल प्राप्त हो जाता है, और कुछ बाकी नहीं रहता है। इसे जितने तुम इकट्ठी करना चाहते हो ये सब कुछ मिल जाएगा यदि ज्ञान प्राप्त कर लो। ब्रह्म ज्ञान होने से क्या लाभ है, परमात्मा दर्शन होने से क्या लाभ है, थोड़ा विचार करे तो। इधर उधर करते करते जितने तुम इकट्ठी करो, जितने फल प्राप्त करो, आगे कहेंगे केवल परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसके अंतर्भूत सब कुछ है। एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ हो गया। उसको नहीं क्या, बाकी जितने इकट्ठी क्या सब छोड़कर जाएगा, कुछ लेकर जाना नहीं। एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे उसका आगे बताएंगे। श्लोक बोलो। निष्काम हो जाए कर्म तो करने के लिए कहते हैं, और निष्काम हो जाओ, कामना को छोड़ दो, इच्छा को छोड़ दो, फल इच्छा छोड़ दो। कर्म करने के लिए कहते, कर्म नहीं करो ये बात नहीं, कर्म करो किंतु फल इच्छा को छोड़ दो। ये शास्त्र में वेद में बहुत कर्म है, फल भी बहुत कहेगी, अनंत फल कहेगी। उसकी इच्छा नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे, कामना छोड़ देंगे तो ईश्वरार्पण अनुष्ठान क्यों खींच ले, ईश्वर के लिए अनुष्ठान करेंगे। ईश्वर को क्या आवश्यकता, उनके लिए क्या कर्म करना, कर्म कर उनका अर्पण करना क्यों करेंगे, तो उसका फल कहते लाभ क्या है। यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संप्रुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उदपाने यावान अर्थ तावान सर्वतः संप्रुतोदकी, ये दृष्टांत पहले समझ लो। उदपाने यावान अर्थ तावान सर्वतः संप्रुतोदकी, इसी प्रकार सर्वेषु वेदेषु यावान तावान ब्राह्मण से भी जानत हो, ये दृष्टांतिक होगा। यावान अर्थ प्रयोजन, जितने प्रयोजन उदपाने स्वल्प स्वल्प जल स्थान, कुप तड़ाक आदि अनेक उदपान है, जल है, जल पाइप में पानी आता है, जल कहीं कूप है कभी तड़ाक है, उसमें जितने प्रयोजन होता है, पानी पर्याप्त पानी आवश्यक होता है, जल स्नान करने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, घर साफ करने के लिए, जितने कुछ प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है यावान अर्थ उदपान अर्थ प्रयोजन, छोटे छोटे जलाशय होने पर जो प्रयोजन सिद्ध होता है, सर्वतः संप्रुतोदके तावान, और भरा हुआ जल बड़े ह्रद मिल गया, सारे प्रयोजन उसमें अंतर्भूत हो गया। कहीं पानी पीने के लिए एक स्थान से लेते हैं, कहीं कपड़ा धोने के लिए पानी अलग, पीने के लिए कोई कुआं छोटा है, पानी कुआं है, अच्छा पानी है, वहां बहुत पानी नहीं मिलेगा, तो जैसे अभी कहीं पानी पीने का पानी अलग, कपड़ा धोने का पानी अलग, स्नान करने के पानी अलग, अलग अलग प्रयोजन, किंतु शुद्ध जल उदक सर्वतः संप्रुत हो सके, भरे भरे बहुत जल प्राप्त, जलाशय प्राप्त हो गया, हृदय आदि नदी आदि बहुत जल प्राप्त हो गया, सारे जल उदपान का जो कार्य सब उसमें सिद्ध हो जाएगा, अंतर्भूत हो गया। आगे छोटे मोटे जलाशय ने उसमें सब कुछ हो जाता है, ऐसे जल है जैसे गंगा जल है, स्नान करने के लिए स्नान करते हैं, पीने वाले पानी लेकर पीते हैं, सब काम हो जाता है, बड़े जलाशय शुद्ध प्राप्त होता है, उससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है, वही पानी लेकर के सब कुछ प्राप्त हो गया। समुद्र होने से ये पी नहीं पाएंगे, किंतु ये सर्वत संप्रुत होकर भरा हुआ पानी प्राप्त होने पर वो छोटे मोटे जल का जो प्रयोजन सिद्ध हो गया। इसी प्रकार यावान सर्वेषु वेदेषु, सारे वेद में जितने फल कहे गए, जितने प्रयोजन है कर्म कांड के द्वारा, बहुत फल कहे गए। यजेते स्वर्ग काम, स्वर्ग चाहने वाले याग करे, धन चाहने वाले याग करे, वृष्टि चाहता इच्छा करे याग करेंगे तो वृष्टि हो जाएगी। कारिर्या यजेते वृष्टि काम हो, चित्रया यजेते पशु काम हो, वायव्यम श्वेत मालभेत भूति काम हो, ऐश्वर्य चाहने वाले वायु देवता को कर्म करने के लिए कहा गया। ऐसे बहुत कर्म का विधान, और कुछ मानस उपासना का विधान है जिसके द्वारा देवत्व की प्राप्ति होती, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, उपासना विभिन्न उपासना, अहंग्रह उपासना ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। ये जितने सब कहे गए तावान ब्राह्मण से भी जानता हो, जब ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया ब्राह्मण ज्ञानी, सन्यासी में हो, ज्ञानी हो, परमात्मा तत्व तो को जो जान लिया और सब फल उसको मिल गया। सारे वेद उक्त कर्म के फल, वेद में कहे गए जितने कर्म उपासना उन सब का जितने फल है, जितने यज्ञ दान तप आदि कहे गए सब के फल जितने हैं, सारे फल ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी फल के अंतर्भूत है। ब्रह्मज्ञान पर तो स्वयं ब्रह्म आनंद घन परिपूर्ण आनंद को प्राप्त कर लिया, जो कि सारे कर्म उपासना मिल करके भी उसके आनंद के एक अंश भी नहीं है। ब्रह्मज्ञान जो परिपूर्ण आनंद है उसका एक अंश भी नहीं कर्म उपासना सब मिल करके जितने आनंद ब्रह्मलोक सुख तक जितने सुख आनंद सब उस सब मिल करके ब्रह्मानंद के एक अंश को भी के लिए पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है? ब्रह्मानंद वस्तु तो आनंद है, बाकी जो आनंद है ये तो आनंद के प्रतिबिंब है। जो आनंद हमको विशेष सेवन करने से प्राप्त होता है वास्तव आनंद नहीं है, वह आनंद से जो लगता है उसको हम सुख कहते हैं। आनंद तो परिपूर्ण आनंद ब्रह्म ही है। जब हमारे वासना के कारण चांचल्य है मन में, रजोगुण तमोगुण है, अंतकरण स्वच्छ नहीं होता है, तो परिपूर्ण आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती है, अज्ञान से ढका गया। जब हम चाहते ये वस्तु हमको मिल जाए, ये वस्तु हमको मिल जाए, यह वस्तु हमको मिल जाए, अंतकरण में वासना बढ़ती है। जैसे जल को हिलाते हैं, जल में मैला है, तमोगुण जल में काई जम गई, मैला जम गया, और जैसे वासना भूतों से जल हिलता रहता है, जल के ऊपर काई जम गया और जल हिलता रहता है। अभी काई को हटाने से प्रतिबिंब अच्छा दिखेगा चंद्र का? काई नहीं हटाएगी, जल स्थिर हो जाएगा तो प्रतिबिंब दिखेगा नहीं? काई रहे और जल हिलता रहे तो प्रतिबिंब दिखेगा? अभी महिला को हटाओ और हिलना बंद हो गया, थोड़ा स्थिर हो गया, जल स्वच्छ है तो प्रतिबिंब दिखेगा? ये ब्रह्मानंद परिपूर्ण आनंद की अभिव्यक्ति प्रतिबिंब अंतकर्ण में होती है, अभिव्यक्ति होती है। और अंतकर्ण जो तमोगुण महिला है, पाप बहुत है, उसको दबा कर रखा है, प्रतिबिंब कैसे होगा? ये सब हटेगा। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, पाप कर्म कम होगा, धर्मेण पापम अपनुदति, बहुत सत्कर्म पुण्य कर्म करेंगे तो पाप कम होता है, फिर तमोगुण मैला हटता है। तो मैला को अंतकर्ण निष्काम कर्म करने से अंतकर्ण शुद्ध होता है। अंतकर्ण शुद्ध क्या है? अंतकर्ण में तमोगुण ही अशुद्धि है, वासना ही अशुद्धि है, ये कम होते जाते हैं। ये वासना इसको हिलाने वाले, जैसे जल में मछली आदि है वो इधर उधर चलते फिरते तो पानी को हिलाते रहते हैं, इसी प्रकार अंतकर्ण आपके अंतकर्ण जो वासना है वो वासना से अंतकर्ण को हिलाते रहती, कभी इधर संकल्प कभी उधर संकल्प, वासना के कारण ही इच्छा होती, इधर मन भागता है, संकल्प विकल्प होता रहता है मन में। मन का स्वभाव है, मन का स्वरूप है संकल्प विकल्पात्मक मन। और संकल्प विकल्प क्यों होता है? इधर उधर वासना है, मन यो चाहता है, यह चाहता है, इधर चाहता है, इधर उधर भागता रहता है। ये सब को दूर करने के लिए निष्काम कर्म उपासना यज्ञ दान तप ये सब करने पर रजोगुण तमोगुण कम होते हैं, कम होने से अंतगुण स्वच्छ होता है। स्वच्छ होने पर थोड़ा विवेक विचार होता है। जब हम चाहते पदार्थ किसको प्राप्त करने के लिए चांचल्य अंतकर्ण में जब प्राप्त हो जाता है, मिल गया, उस समय एक क्षण के लिए लगता है मैं कृतार्थ हो गया, कब से चाहता ये मुझे मिल जाए मिल जाए, नहीं मिलता था मिल गया। छोटे बच्चा रोता है भूख के कारण, भूख है कभी कष्ट है रोता है, और माता अपने काम में व्यस्त है तो उसको देखने के लिए क्या समय नहीं, तो रोता रहता है। वो माता क्या करेगी, उसके पास एक खिलौना डाल देती है। वो बच्चा होता है सब कुछ मिल गया बड़ा, उसको लेकर पकड़ लेता है, भूल जाता है उस समय क्यों रो रहा था उसको, भूख के कारण कष्ट के कारण, किंतु वो जब मिल गया सोचा कुछ अपूर्व पदार्थ मिल गया, उसको लेकर के मुख में रखता है लगाता है। उस समय थोड़ी देर रोना बंद हो गया ना, दुख कम बंद हो गया, दर्द बंद हो गया, भूख चिथा निवृत्ति हो गई और भूल जाता है। ये समझो भूल करके इसको पकड़ लिया, रोना बंद हो गया। इसी प्रकार जो वासना हमारी है, इसको मिल जाए मिल जाए मिल जाए, जब मिल जाता है ना, छोटे बच्चा जिसे भूल जाता है अभिवेक, इसी प्रकार ये थोड़े देर के लिए मन स्थिर हो जाता है, मन वासना चांचल्य बंद हो गया थोड़ी देर, उस समय सुख का प्रतिबिंब आनंद स्वरूप का, अपने स्वरूप का थोड़ा सा प्रतिबिंब अंतगण में आ गया। और क्या सोता है, इससे हमको सुख मिला, यही इसको प्राप्त कर लिया, अब मिलते ही थोड़ी देर बड़ा ओ भाई थोड़ा प्रतिबिंब आ गया, क्या देखा, सुख का प्रतिबिंब को सुख समझ करके खुश हो गया, ये पदार्थ मिल गया। फिर थोड़ी देर में नहीं मिला और दूसरे मिला, वो मिल जाए। जितने सुख भोग करते हैं यहां से लेकर ब्रह्मलोक सुख तक, सब सुख के प्रतिबिंब है, वास्तव सुख नहीं है। विषय से जो सुख मिलता है कहते, विषय प्राप्त होने पर अंतकरण स्थिर हो गया, स्वरूप आनंद स्वरूप का थोड़ा प्रतिबिंब होता है, उसी प्रतिबिंब का नाम सुख है, सुखाभास। सुख नहीं है वो, क्या है, सुखवद आभास सुखाभास, सुखाभास को सुख शब्द से कहते हैं। दर्पण में आपका मुख दिखता है नहीं, दर्पण में क्या दिखता है, मुख दिखता है, मुखाभास दिख रहा है मुख, उसको भी मुख कहते हैं। अभी क्या, दर्पण में आपका मुख दिखता है, मुखाभास प्रतिबिंब को मुख मुख कहते कहते दर्पण में मुख दिखता है, जैसे मुख नहीं मुख का आभास दिखता है। किसी व्यक्ति को देखो, किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखो, बराबर है, किसी व्यक्ति का देखो, व्यक्ति को नहीं देखा पड़ता है, उसका प्रतिबिंब देखा, बराबर हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मलोक सुख तक जितने है सुख के प्रतिबिंब है। अच्छा, कितने प्रतिबिंब मिलकर के बिंब के समान एक हो जाएगा, बिंब छोटा सा है, इतने छोटा सा मुख है, और प्रतिबिंब बहुत बड़े बड़े प्रतिबिंब है, दर्पण लगा देंगे तो बड़े बड़े प्रतिबिंब बहुत दिखेगा। हजार प्रतिबिंब देखने पर बिंब को देखने के बराबर हो गया नहीं हुआ, बिंब को देखने से हजार प्रतिबिंब देखना से जो लाभ है, एक बिंब को देखने से उससे अधिक लाभ है या नहीं। इसको देखा, भगवान को दर्शन के लिए कहने गया दूर तक, महामंदिर नहीं जाएंगे, और बाहर देखा बड़े बड़े प्रतिमा चित्र है, बहुत चित्र देखने के बाद हो गया भगवान का दर्शन, हो गया वापस आ गए, सब होने के बाद भी भगवान का दर्शन थोड़ा करना, रास्ता लाइन पर खड़े। इसी प्रकार समझ लो, ब्रह्मानंद तक जितना आनंद मिलता है वो सब आनंद क्या है, प्रतिबिंब, सुख के प्रतिबिंब है, सुखाभास है। अब ब्रह्मानंद का कितना अंश होगा बताओ, ये कितने आनंद जो है विषय आनंद, ब्रह्मलोक तक जितने सुख, ये प्रतिबिंब कितने मिलाने के बाद आनंद के समान हो जाएगा, आनंद देके एक अंश भी नहीं होगा, फिर भी अंश कह देते हैं। अंश क्या कहें, कहेंगे वो चंद्र जो ऊपर दिखता है उसका अंश ही इसमें, किसमें, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब चंद्र के एक टुकड़ा आ गया, अंश है ही नहीं, अंश जैसे, अंश ही नहीं, अंश जैसे। इसलिए सारे जितने सुख है विषय सुख ब्रह्मानंद के एक अंश के अंश में आ जाएगा, उसको कह देते एक अंश है, उसके अंश से भी जितने विषय सुख मिल करके ब्रह्मानंद के एक अंश के लिए बराबर होगा नहीं। तावान ब्राह्मण से बिजान, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वह जो आनंद है वो आनंद के एक हिस्सा भी नहीं, एक अंश भी नहीं सारे ब्रह्मांड में जितने सुख है। वस्तुतः ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, परमात्मा साक्षात्कार कर ले, वो आनंद की बात बहुत दूर की बात है। जो थोड़े साधन करता है, अंतगुण स्वच्छ होता है, सत्वगुण बढ़ता है, उस समय भजन करते समय भी एक सात्विक आनंद प्राप्त होता है, जो कि विषय सुख से बढ़ करके है। विषय सुख से बढ़ करके सुख होता है, जो सात्विक, वो परमानंद साक्षात्कार हुआ नहीं, किंतु आप यदि कुछ करके थोड़ा आगे बढ़ते हो तो एक सात्विक आनंद प्राप्त होता है कि मैं कुछ जीवन में कर पाया, अभी तक तो जीवन बर्बाद हो गया, अभी मैं कुछ कर पाया। देखा है कितने स्थान पर, कहीं पूछते आज एकादशी मालूम है ना, एकादशी फलाहार करने वाले कोई है यहाँ, कितने याद है, आधा से अधिक है ना, कम, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, कहीं कैसे देखा। फिर एकादशी करने के लिए कौन सी एकादशी करते, फिर बाद में गए तो लोग जो एकादशी व्रत शुरू करते, बोले हमको कभी ये ऐसे भावना नहीं थी, किसने बताया नहीं था, हम कोई प्याज उसमें खाते रहते, फिर छुड़वा दिया, छोड़ने के बाद में जो कहते बोलते बड़ा अच्छा, हम तो अभी लगता है कि हमने कुछ किया, सारा जीवन तक खा खा करके चला, अभी तो प्याज लहसुन से हमको घृणा भाव है। और एकादशी व्रत करने वाले कहते एकादशी करने से हमको बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा करने से क्या होता है, एकादशी व्रत कोई कर लिया तो परमात्मा का दर्शन हो गया, प्याज लहसुन छोड़ दिया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, किंतु इतने भी जो नहीं कर पाए आगे ब्रह्म ज्ञान की बात क्या करेगा, परमात्मा दर्शन क्या करेगा, परमात्मा की भक्ति करेगा। परमात्मा की भक्ति करते हैं, इतने नहीं कर सके जो हमको मिला, पहले परमात्मा को अर्पण करेंगे उसके बाद भोजन करेंगे, ये भक्त का कर्तव्य या नहीं? नहीं, उस समय हम तो चटापट खाएंगे, अब भगवान के लिए उधर थोड़ा चीनी थोड़ी केला वो रख देंगे, तुम उसमें संतुष्ट हो जाओ, और हम प्याज लहसुन चटापट क्या क्या नैनी मैगी क्या क्या सुला कर खाएंगे। अरे भगवान को उधर कोई कहते नहीं, हम जो प्याज लहसुन डालते हैं भगवान ने वो भोग नहीं लगाते हैं। मैं क्या बड़ी कृपा आपकी भगवान के ऊपर, हम तो खाएंगे उनको नहीं देते हैं। तो ये भक्त क्या करना चाहिए, जो प्राप्त हुआ पहले शुद्ध बनाए, परमात्मा को अर्पण करे, फिर प्रसाद पाना चाहिए। इतने जो करते हैं, कोई करता है कोई नहीं कर पाता है, कोई करता है प्याज उसने छोड़ दिया, जो लाभ क्या लाभ होता है, जो आनंद होता है वही स्वयं बताता है। इनमें से बहुत होंगे जो पहले नहीं करते थे करने लगे, एकादशी कोई नहीं करता था व्रत करने लगा, उसको फिर अच्छा क्या लगता है वो स्वयं जानता है। कोई प्याज उसने खाता था छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या लाभ हुआ वही पता चलता है। हम बताने पर तो कहेंगे तो ये तो आप ही खेल खाली कहते प्याज उसने छोड़ कहते हो, किन्तु जो छोड़ने वाले देखे ऐसी व्यक्ति, अर्थात कुछ छोड़ करके कुछ आगे बढ़ते हैं, एक दुर्गुण छोड़ दिया आगे गया, थोड़े कुछ सद्गुण आया तो एक उसे लगता है कुछ विशेष हुआ, हम कुछ कर पाएंगे मन में के, ये सात्विक आनंद है। सदाचार सद्गुण और सत्कर्म करके थोड़े व्रत उपवास आदि कोई करते तो मन में के सात्विक आनंद होता है नहीं? अच्छा, सुषुप्त अवस्था में क्या क्या विषय मिलता है बताओ, विषय के बिना उस समय कितना अच्छा लगता है, वो अच्छा लगने के लिए सारे भोग करने वाले भोग पदार्थ सब को छोड़ करके सो जाता है, सोता है ना, नहीं सोना पड़ता है। कोई कहेगा तीन दिन तक आपको सोना नहीं, जो भोग करने की इच्छा सो मिल जाएगा, सोना नहीं तीन दिन सात दिन, एक दिन भी बड़े मुश्किल, एक दिन में सो जाए, जैसे परीक्षा में देते ना कुछ लिखेगा तो मिलेगा, गलत लिखेगा तो कुछ कट जाता है, फेल नहीं कट जाता है, हिसाब करेंगे तो फेल होगा कट जाएगा। इसी प्रकार यदि निश्चय किया जाए आप सोना नहीं, बीच में एक बार झटका आ गया तो गया जुर्माना लग गया, तो कितने व्यक्ति तैयार है तीन दिन पांच दिन तक सोना नहीं, आज जो चाहे सो मिल जाएगा, कौन है कोई ये तो एक घंटा सुनते सुनते भी झटका लग जाता है, तीन दिन की बात क्या है ये एक घंटा के बीच में किसको लग जाता है, कुछ नहीं करे घर में बैठे तो भगवान जप करने ध्यान करने बैठा तो भी नींद लग जाती है, लगती किसको तो सुख क्या मिलता है सुश्रुति अवस्था में, क्या विशेष कुछ सुख है जो विषय के बिना प्राप्त होता है, कोई विषय नहीं, ये भगवान ने बनाया दिखाया, देखो तुम सब तो विशेष सुख मिलता है, विशेष सुख नहीं, मन में चांचल्य, जब मन क्या होता है सुश्रुति में, मन थोड़ा शांत हो गया, संकल्प विकल्प रहित हो गया, मन में संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए तो जो आनंद, उसी आनंद को हम विषय से मिला करके आरोप करते हैं, विषय से सुख नहीं मिलता है। इसलिए जितने सब सुख है, यावान सर्वेषु वेदेषु तावान ब्राह्मणेषु विजानतः, इस श्लोक में क्या कहते हैं, जितने जल छोटे जलाशय के द्वारा जितने प्रयोजन सिद्ध होता है सब कुछ अंतर्भूत होता जाता है, भरा हुआ जलाशय शुद्ध जल बहुत पर्याप्त मिल गया, उसमें सब कुछ अंतर्भूत हो गया। ठीक इसी प्रकार सारे वेद में जितने कर्म उपासना का फल जितने है, तज्जन्य जितने सुख है, सब कुछ अंतर्भूत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान परमात्मा साक्षात्कार होने पर उसके अंतर्गत सब हो जाता है। अर्थात जितने कर्म तम सकाम कुंदुम करो, सकाम कर्म कर जो फल प्राप्त होता है, निष्काम कर्म करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लो, सब कुछ उसमें अंतर्भूत हो गया, इतने बहुत उसके कितने करोड़ों गुना, करोड़ों कहन से भी नहीं होगा, उसका कुछ हिस्सा है ही नहीं। इसलिए प्रश्न क्या था, यदि कर्म फल हम नहीं चाहेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो शास्त्र में भी तो बहुत कर्म कहेंगे फल अनंत, उसकी इच्छा नहीं करे कर्म करेंगे ईश्वर अर्पण बुद्धिया क्या क्या प्रयोजन क्यों करेंगे। इसका उत्तर है, सारे कर्म फल जितने मिल करके उससे अधिक फल मिलता है। यदि परमात्मा को अर्पण करो, निष्काम होकर करो, अंतकरण शुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करो, तो क्या लाभ है। सारे कर्म उपासना के फल जितने, सारे फल उसके अंतर्गत है, उससे कितने कई गुना अधिक फल है। इसलिए इसको प्राप्त करना चाहते हो, नित्य फल प्राप्त करना चाहते हो, तो अनित्य फल अनित्य सुख की इच्छा को छोड़ करके करो कर्म करो। श्लोक बोलो। ज्ञान निष्ठा में अधिकार होने के पहले जब तक अधिकार नहीं है तब तक कर्म विहित कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि अधिकारी को कर्म करे किंतु निष्काम होकर करे, परमात्मा को अर्पण कर करे। इसलिए आगे स्पष्ट कर देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते एक पद है, कितने पद इसमें है। हाँ ठीक है, कर्मणि एव अधिकारः अधिकारस्ते। तृतीय पद में कितने पद है, कोई कोई सत्य पहला में जो चार है तो तृतीय में तो उसका अधिकार होना चाहिए। तीन है। हाँ। मा कर्म फल हेतुर भूर, यहाँ श्लोक बोलते समय भू के आगे विसर्ग उच्चारण करना ठीक है। मां कर्म फल हे तुर भू, ऐसा ठीक है। हाँ नहीं है, ये आज ब्रह्मास्म माला बोले उसमें ये था विसर्ग। हाँ 25वें श्लोक में अखंड एकरसम ज्योति अखंड एकरसम सुखम ऐसा पाठ है, वहां संशोधन कर देना है। 25वें श्लोक में से ज्योति के आगे विसर्ग नहीं रहेगा, र रहेगा, आगे अ को काट करके र लिखना। अखंडेकर सम ज्योति आगे रखंडेकर सम सुखम, अ के स्थान पर र लिख देना, ज्योति के विसर्ग को काट कर चिन्ह कर देना। यस अखंडेकर सम ज्योति रखंडेकर सम सुखम, रखंडेक ऐसे बोलना चाहिए। ये बीच में ऐसे विसर्ग बाद में अ है तो विसर्ग नहीं होता है, विसर्ग बोलना वहां अशुद्ध है। विसर्ग तो पहले होने के अवसान हो या बाद में कोई वर्ण हो, ख प छ ठ आदि वर्ण हो। इसी प्रकार यहां मां कर्म फल हेतु फल हेतु भूर, र के आगे क्या है म, र के आगे क्या है म, के पहले कहीं में आप दुनिया में विसर्ग नहीं मिलेगा। अ के पहले कहीं विसर्ग मिलेगा, कहीं स्वर बनने के पहले विसर्ग नहीं मिलेगा, म के पहले भी कभी विसर्ग नहीं मिलेगा। कहीं मिलेगा, कहीं बोलो कहीं नहीं मिलेगा, विसर्ग रेप रहेगा, रेप को विसर्ग नहीं होगा। इसलिए यहां मां कर्म फल हेतु भूर रेप है, विसर्ग नहीं होगा। और एक पाद के आगे विराम पूर्ण विराम नहीं कर सकते, विराम पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में है, एक पाद दूसरे पाद के बीच में विराम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ये रखना, कोई कोई नहीं जानते हैं वो इसे सिखाएंगे, कहेंगे इसे बोलना चाहिए मां कर्म फल हेतु भूर भू, कहेंगे भू नहीं, अलग पदच्छेद करते समय करो, समझने के लिए कहो, किंतु श्लोक बोलते समय पाठ करते समय ऐसे नहीं। कर्मणि एव अधिकार ते, कर्मणि एव अधिकार, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं, कर्म में ही मतलब फल के में नहीं। मां फलेषु कदाचन, फल में कोई अधिकार नहीं, कर्म करो फल में कोई अधिकार नहीं, कर्म करो। तो कहते हम कर्म करेंगे फल में क्यों अधिकार नहीं। कर्म करते हैं किसके द्वारा कर्म करते हैं, शरीर इंद्र मन के द्वारा। ये शरीर इंद्र मन अपना है ना, शरीर इंद्र मन को आपने बनाया। तो मैं करता हूं, मैं आप कौन हो करने वाली, आपके जो सामर्थ्य कहां से आया, किसने दिया, ये थोड़े विचार करें। मैं करता हूं क्यों कर्म, फल की इच्छा छोड़ नहीं करूंगा, फल क्यों नहीं चाहूंगा, मैं क्या करता हूं मनुष्य जन्म प्राप्ति के लिए, आपने कुछ किया। अभी आग में जो सामर्थ्य इंद्रिय में सामर्थ्य उसके लिए आपने कुछ किया, और जो कुछ करते थे मैंने क्या किया। इसलिए जो कुछ परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, परमात्मा के लिए कर्म करना के लिए क्या पति, मैं चाहता हूं क्यों, अब मैं क्या है, मैं करते करते इसमें होते परमात्मा के लिए क्यों अर्पण करेंगे। हम कर्म करते, हम क्या कर्म करने वाला आप कौन है। इसलिए कर्मन एव अधिकार है, तो कोई फल की इच्छा नहीं करे। जो परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, इंद्रिय सामर्थ्य मिला, धन संपत्ति प्राप्त हो, तो परमात्मा की कृपा से ठीक है। आपने कुछ प्रयत्न पुरुषार्थ किया, किंतु आपके जैसे आपसे अधिक पुरुषार्थ करने वाले भी होते हैं, उसके पास धन नहीं है। आप जितने काम करते हो उसके अपेक्षा अधिक काम करने वाले आपके घर में कोई नौकर होगा, और परिश्रम करने वाले कोई अधिक होते हैं, उनके पास धन अधिक नहीं, आपके पास धन अधिक, क्या कहे परिश्रम का फल ये बोलो। बुद्धिमान, अच्छा बुद्धिमान कोई जरूरी नहीं, आपसे कम बुद्धि वाले भी आपसे अधिक धन लेकर बैठा है। कोई एक विद्या में निपुण है, उसके पास जितने धन है उसी विद्या में निपुण नहीं कम है, उसके पास अधिक धन होता है। पढ़ते समय वैद्य पढ़ते हैं, डॉक्टरी, कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, कोई बहुत निकृष्ट होता है, कोई ऐसे कम। बाद में जो औषध चिकित्सा करते हैं, जो अच्छा वैद्य है उसके पास रोगी कम आते, रुपया कम मिला, और जो कुछ नहीं जानता है, कोई वैद्य नहीं इसे कुछ दवाई देता, उसके पास रोगी बहुत, रुपया बहुत हो गया, करोड़पति बन गया। ऐसा देखो कितने मिलेंगे, बहुत पढ़े लिखे के पास कुछ नहीं, कुछ नहीं पढ़े लिखे कुछ दवाई देता, वो कितने है? सब मार्ग में, केवल वैद्य के लाइन, सब मार्ग में ऐसा है। व्यवसाय करने वाले, सामान्य व्यवसाय करने वाले कितने रुपया के निकल लेगा, बड़े व्यवसाय करने वाले नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार सब मार्ग में है। तो ठीक पुरुषार्थ है तो भी मिलता है, अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। इसलिए जो कुछ करते हो कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, मां फलेषु कदाचन। अच्छा कर्म फल की इच्छा से यदि कर्म करेंगे, फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो कर्म फल देगा, देगा नहीं देगा, कर्म फल देगा। कर्म फल देने से कर्म फल का हेतु, आप कर्म फल की इच्छा करने से आपको कर्म फल मिलेगा, कर्म फल का हेतु कौन होगा, आप ही, आप इच्छा करोगे ना, आप इच्छा करोगे तो आप कर्म फल प्राप्त करोगे, तो कर्म फल का हेतु आप होगे। भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतु भूर, तुम कर्म फल का हेतु नहीं बनो, तुम कर्म फल के लिए हेतु नहीं बनो। कब हेतु होगा, जब इच्छा करेगी, जब इच्छा करेगा कर्म फल का हेतु होगा। भगवान कहते कहे तुम कर्म फल के हेतु नहीं हो मां भू, तुम कर्म फल का हेतु नहीं बनो, अर्थात कर्म फल की इच्छा। अच्छा कर्म करेगा फल की इच्छा नहीं करेगा तो व्यर्थ हो गया, क्या होगा, वही कर्म अंतकोण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति परमात्मा फल देंगे ही, इसे कर्म फल के हेतु तो नहीं हो। फिर कहते यदि कर्म फल हेतु नहीं गए, कर्म फल नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे सन्यासी माता हम भी सब छोड़कर बैठ जाएंगे। कहते माते संगोस्तु अकर्मणी, अकर्म में कर्म के अभाव आसक्ति करने, कर्म नहीं करेंगे छोड़ दो। बहुत कहे क्या क्या है, सुबह से उठकर क्या करना, इसमें क्या होगा। बहुत बुद्धिमान लोग आजकल कहते क्या सुबह से उठ करके, कभी माता पिता कोई पाठ करते तो उनको चिल्लाते हैं, हमको सोने नहीं देते, आठ बजे उठ करके, सुबह से उठ करके कुछ बोलते रहते तब डांटते बस हम, सात आठ बजे अभी क्या जगने का, आज रविवार है, 10-11 बजे जगने से चले गया, क्योंकि रात में 3 बजे आकर सोया हुआ, उठेगा कब। अरे माता पिता दादी दादा तो कोई आया थोड़ा कुछ पाठ करते है, मतलब उनको अच्छा लगेगा। तो ये अकर्मणी, क्या इसको करना, ये फल नहीं तो क्यों करना, बड़ा कितने बुद्धिमता है, फल नहीं चाहे तो क्यों करना। मंदिर जाते, बोले मंदिर जाते तुमको क्या मिला, नहीं मिला तो क्यों जाते हो? मंदिर जाते तो बताए हो क्या लेकर आए, बोलो तुझे मिला। अब जाते हो तो नहीं मिलता क्यों जाते हो? सत्संग जाते तो क्या मिला, क्या मिलता देखा? अभी तो क्या हो गया, कितने बार भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया क्या? अरे फिर क्यों जाते हो? बड़े बुद्धिमान सो कहने वाले, वो जो काम करते हो उसमें क्या लाभ है पूछो? तो कहते मात्य संगोस्तो अकर्मणी, कर्म नहीं करना। अशास्त्रीय कर्म करने में तो ये प्रश्न नहीं होता है, उसे क्या लाभ होता है? अशास्त्रीय कर्म, निषिद्ध कर्म, भटकना, घूम फिर करके रुपया को बर्बाद करना, उससे नहीं पूछते क्या लाभ है। किंतु शास्त्रीय कर्म करेंगे तो इसे क्या मिला, क्या लाभ है, बड़े बुद्धिमत्ता। इसलिए यदि कर्म फल नहीं चाहते हम कर्म नहीं करेंगे, ये तो तमोगुण का कार्य, रजोगुण तमोगुण का अज्ञान मूर्खता का कार्य है, तो हम नहीं करेंगे। शास्त्रीय कर्म नहीं करेंगे ये तो बिल्कुल नास्तिक मत के अंतर हो जाता है, चार्वाक मत के अनुसार हो जाता है। शास्त्र मार्ग में शास्त्रीय मार्ग पर चलना है अपना कर्तव्य। अशास्त्रीय मत के ऊपर श्रद्धा हो, अशास्त्रीय मत को कोई सुनता है, इच्छा करता है, ये पाप के फल और पाप का सूचक ऐसा जब दिखता है, कौन बोलते रहते क्या? कोई पाप, पाप का सूचक ऐसा कोई करता है तो सूचित हो जाती कि पापी है, ऐसा कोई पापी के मुख से ऐसा निकलेगा, ऐसे उसको कुछ नहीं कहना कि समझना कि ये पाप का कारण, पाप का सूचक होता है। शास्त्रीय मार्ग कोई चलता है तो सन्मयन चलता है, पूर्व पुण्य का सूचक, आगे पुण्य प्राप्त करेगा। कोई लक्षण होता है, कोई पेड़ पौधे में पत्ते में से सुगंध होता है, तुलसी के छोटे पत्ते में कोई देखा वो क्या है, पता लेकर देखा सुनो पता चल जाती तुलसी है, और कोई लिया वो पता चलता है क्या है, सुगंध आदि शुरू से पता चल जाता है किसका कैसे लक्षण, परिवर्तन का भी होता है। तो ये सब कहते हैं जो शास्त्रीय मार्ग में अश्रद्धा ये पाप के कारण, इसलिए कर्म नहीं करो ये माते संगो अस्तु अकर्मी, कर्म फल नहीं चाहे तो कर्म क्यों करेंगे ये भावना नहीं, कर्म करना है, सामर्थ्य मिला, शरीर मिला, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। शास्त्र में आया यस्यांग नोपकारम तस्य सर्वं वृथागतम्, जिसके अंग किसका उपकार नहीं करता है, सत्कर्म नहीं करता है, उतना सब व्यर्थ ही हो गया। जो मिला सामर्थ्य परमात्मा ने दिया, मनुष्य जन्म दिया और हस्तपद आदि दिया, बुद्धि दी, इंद्रिय है, पर है, आगे धन संपत्ति कुछ प्राप्त है, जो कुछ मिला उसका सदुपकार आप नहीं करोगे तो उसके बदले में फिर आगे वही से मिलेगा बार बार। सदुपयोग दिया गया इसका सदुपयोग करो। शरीर मिला तो शरीर से क्या प्राप्त करने का देखना, क्या लाभ हम कर सकते हैं? जो अन्य शरीर से नहीं मिलेगा उसको प्राप्त करना, मनुष्य शरीर से वही प्राप्त करना जो अन्य शरीर से नहीं मिलेगा। अन्य पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, घोंसला बनाते हैं, खाते पीते सब करते हैं, ये मनुष्य जन्म मिल करके ही कहीं मकान बनाया, खाया ब्या बचा पर क्या मरिया, यही करेंगे तो पशु और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? यही मनुष्य कुछ विशेष कर सकता है, धर्म कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे के लिए विचार विवेक ये सब कर सकता है। हाँ, सदुपयोग करने की इच्छा करते हैं किंतु सदुपयोग नहीं भी कर पाते हैं। यदि सदुपयोग करता है तो ठीक है, किंतु इच्छा करके सदुपयोग नहीं करके इकट्ठी करते रहते, दाना इकट्ठी करते, सदुपयोग नहीं करते तो इच्छा है व्यर्थ है। और यदि सदुपयोग करने की इच्छा है उसके इसे यदि करता है कुछ किया तो अपने आप ही हो वैराग्य होगा, फिर अपने आप वैराग्य इच्छा भी कम हो जाएगी। यदि कहीं तो कितने व्यक्ति कर पाते हैं, इच्छा करते सोचते हैं कि हम सदुपयोग करने के धन इकट्ठी करते हैं, किंतु धन इकट्ठी करने के बाद सदुपयोग कितना होता है, कितने इकट्ठी करते, कितने दुरुपयोग होता है, कोई दुरुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग नहीं करता तो संचित करते करते इसे रह करके जाता है। हम सदुपयोग करेंगे सोचते सोचते नहीं कर पाता है, धन कमाना कठिन तो है, उससे और कठिन है उसका सदुपयोग करना। सदुपयोग करना बड़े कठिन, बड़े भाग्य परमात्मा की कृपा के बिना धन का सदुपयोग करना भी बड़ा कठिन होता है, नहीं कर पाते बहुत लोगों, जरूर लगे ये पर हम दान करेंगे ऐसा सोच करके निषिद्ध कर्म करिए वो पाप लगेगा, उसके अपेक्षा तो निषिद्ध पाप कर्म नहीं करे, दान नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, किंतु पाप कर्म से निषिद्ध कर्म से करना वो भी पाप है। और वो बहुत कुछ बताते आजकल व्यवसाय करने वाले निषिद्ध कर्म, चोरी किए, चोरी करते हैं ना, हाँ टैक्स की चोरी, किसी का भी कोई चोरी, कोई सोना चांदी का चोरी करता है, कोई टैक्स की चोरी करता है, कोई वक्त की चोरी करता है, कई वक्त बक्सर वक्स की चोरी करते ना, कोई टैक्स की चोरी करता है, कोई टैक्सी का भी चोरी करता है, कार का भी ले लेता है, चोरी तो चोरी है। तो इसे में कहते बड़े 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 करोड़पति भी करना पड़ता है, वो इतने कोई कम चोरी करता है, वो करोड़ करोड़ सौ करोड़ हजार करोड़ ऐसा चोरी करते हैं, जो छोटा चोर है बड़ा चोर है। ये भगवान कहते हैं ये अकर्म में संग नहीं हो। श्लोक बोलो। अभी कर्म फल के कारण कर्म फल प्राप्ति के लिए तो कर्म करते हैं, और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करे कर्म करेंगे कैसे, कर्म करेंगे क्या सोचकर करेंगे, कैसे कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं और कर्म करेंगे, कर रहे हैं इसका फल नहीं चाहिए, ये क्यों करेंगे, बैठे होकर के भोजन बनाते हैं, खाना नहीं खाना एकादशी आदि है, अरे भोजन बनाते हो तो क्या करना नहीं खाना, किसको खिलाना वो भी नहीं, क्यों करके भोजन इकट्ठे बनाकर रखते क्यों, हाँ यदि अपने नहीं खाएंगे किंतु किसको खिलाना है अन्न लेकर के, ये तो ठीक है, किसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, करते रहते क्यों करना है, तो भगवान कहते क्या है, योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कर्माणि कुरु संगम त्यक्त्वा हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, योग में चित्त होकर के समत्व कहेंगे केवल ईश्वरार्थम ईश्वर का अर्पण करे कर्म करो, जो शास्त्र भीत कर्म निश्चित कर्म नहीं, शास्त्र भीत कर्म अपने मनमानी जो कर्म नहीं, शास्त्रीय कर्म केवल परमात्मा को अर्पण करो इसके लिए करो। यहां भगवान भाष्य कर कहते ये भी भावना नहीं करो, क्योंकि भगवान कहते संगम त्यक्त्वा, यो कर्म करो ईश्वरार्थ किम तत्वा संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ करके क्या संग है, ईश्वर मेरे पर प्रसन्न हो ये भी भावना नहीं करो, कुछ थोड़ी सेवा कोई कर दिया मेरे पर खुश हो जाए, थोड़े कुछ कर्म करते ये तो फल मांग लिया ना तुरंत, कोई धन मांग लेता है कोई खुश हो जाए, परमात्मा मेरे पर प्रसन्न हो जाए, आज मैं एकादशी व्रत करूंगा हाँ परमात्मा मेरे पर प्रसन्न हो जाए, अब भगवान दर्शन इतने थोड़े कुछ हुआ तो इसके लिए तुरंत भगवान की प्रसन्नता मांग लेना, ये भी नहीं चढ़ो ये भी नहीं इच्छा करो, ये कहते संगम त्यक्त्वा, अब मेरे पाप नष्ट कर दे अथा कुछ फल मुझे मिल जाए, फल मिला नहीं पाप नष्ट कर दे, तो प्रतिबंध नष्ट कर दे, ये भी समझना नहीं चाहिए, संगम त्यक्त्वा किसी में आसक्ति नहीं, थोड़े कुछ किया तो उसमें क्या हो गया, उसके लिए क्या फलों का इच्छा, किसी प्रकार यदि चाहा इच्छा कर लिया उसे मैंने कुछ किया उसके बदले में चाहिए, मैंने कुछ किया इसे बदले कुछ चाहिए, तुरंत हो गया। तो संगम त्यक्त्वा योग में चित्त होकर के ईश्वर अर्पण करके कर्म करो, और कैसे योग में स्थित है कहते सिद्धि सिद्धो समभूत्वा, कर्मजन फल प्राप्त हो नहीं प्राप्त सिद्धि में तुल्य, कर्मजन फल प्राप्त हो गया तो सिद्धि नहीं तो असिद्धि, कर्म से क्या होगा अंतकोण शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्ति होती है ये सिद्धि है, सिद्धि का तो चमत्कार नहीं है, सिद्धि है कर्म से अंतकोण शुद्धि, अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति सिद्धि, और उसके विपरीत असिद्धि, इसके लिए भी विचार छोड़ दो, थोड़े कर्म क्या अंतकोण शुद्ध होकर मुझे ज्ञान हो जाए, थोड़े दिन कोई करता है तो तुरंत 10-15 दिन 10 महीने 1-2 महीना 1 साल 2 साल किया फिर सो छोड़ दिया, 3 दिन किया अभी तो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ क्यों करेंगे, जो शुरू से ऐसे भावना करता है ना ऐसे करेंगे तो मुझे ऐसे हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर नाराज भगवान के ऊपर, भगवान के बाद नाराज हो जाते हैं, इतने दिन क्या कुछ नहीं हुआ क्यों करेंगे, ऐसा नहीं। समर्पित हो गया तो अपने शरीर इंद्रिय मन अर्पण कर दिया भगवान का है, ईश्वर ने नहीं दिया उनके चरण में समर्पित हो गया, कर्म करे तो उसको अर्पण करे, कर्म करे। सिद्धि असिद्धि समभूता का ही अर्थ है, कुछ मिला नहीं मिला ये विचार छोड़ो, इतने दिन के हमको क्या मिला ये व्यवसाय छोड़ो, व्यवसाय करने वाले हिसाब करना पड़ता है रोज रोज, कितने कमाए कितने हानि कितने लाभ हिसाब करना पड़ता है। और ये थोड़े कुछ किया सेवा परमात्मा प्राप्ति के लिए इस मार्ग में आया, मनुष्य जन्म मिला तुरंत हिसाब करे, मैंने इतने जाप किया मुझे क्या मिला, आज एकादशी व्रत कर दिया तो क्या मिला, किसको थोड़ा भोजन खिला दे तो क्या मिला, ये हिसाब किताब छोड़ दो। ये सिद्ध सिद्ध समभूत्वा कहते यही योग है, ये योगस्थ कुरुकर्माणी, योग में स्थित होकर के। योग क्या है, पहले कहा था ना योग में स्थित होकर कर्म करो, ईश्वर अर्पण विद्या करो करो योग में, योग होता है ये योग, समत्वम योग उच्चति, सिद्धि असिद्धि में समान रहना, कुछ मिला तो ठीक नहीं मिला तो ठीक उसके लिए विचार नहीं करना, बल्कि यदि कुछ मिल गया ऐसा होता है, कोई कुछ किया उसको कुछ दिया, वो सोचता है कि मैं इसके लिए क्या किया, यदि एकादशी व्रत करने के बाद आपको कुछ मिल गया, आज ये व्रत क्या कुछ मिल गया तो यही है, एकादशी व्रत का फल ही हो गया, कुछ हो गया तो भगवान कुछ दे देंगे तो कहना मैं ये व्रत ये फल के लिए व्रत नहीं किया, जब परमात्मा प्राप्ति के लिए चाहता है उसको कुछ फल मिल गया तो खुश हो जाएगा। एकादशी व्रत कोई विशेष फल उसको मिल गया, नया फल आया, इतने से एकादशी व्रत चरितार्थ हो गया, इसके लिए एकादशी व्रत किया, किसके लिए, कभी इसे फल नहीं कहते, कहां थे विदेश आया बड़ा सुंदर फल मिला, बहुत स्वादिष्ट फल मिल गया, किस लिए, एकादशी व्रत का ही फल हुआ, जैसे एकादशी व्रत का ये फल मिल जाए कोई सा सोच कर खुश हो जाए अथवा इच्छा करे, इसी प्रकार थोड़ी परमात्मा का भजन किया कुछ फल मिल गया। ये फल नहीं समझना कि इसके अंदर ये तो महान फल है इसका, थोड़ी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयानाय, इसमें थोड़ा क्या संसार भय को नष्ट करने वाला है, ये थोड़े फल से क्या सोचना, इसलिए समान सिद्धि असिद्धि में यहां तक एक विचार नहीं कर, इससे अंतगुण शुद्ध हुआ ज्ञान प्राप्ति योग्यता तुरंत हो गया नहीं हुआ, ये विचार नहीं, जब तक नहीं हुआ तब तक आपके अंदर प्रतिबंधक पाप बहुत है, पाप बहुत है तो छोड़ देने से पाप निवृत्त होकर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, या कर्म उपासना भक्ति करते रहने पड़ेगी, इसलिए यही से करते रहे बिना छोड़ विचार के, यही समत्व सिद्धि असिद्धि में समान है, क्या मिल गया कहीं नहीं मिला वो कुछ विचार छोड़ करके करें, ये जो विचार करेगा ना तुरंत क्या मिला नहीं मिला वो कुछ नहीं कर सकता है, आज विचार किया दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन को छोड़ देगा, देखा कुछ नहीं मिला, शुरू से जो हिसाब करेगा वो आगे नहीं कर सकता है, कुछ नहीं करता है, इतनी ही कृपा है परमात्मा की, समझो यही आपको मिला कि अभी तक कुछ नहीं कर पाता था अभी कुछ कर पाते हो, परमात्मा की कृपा, परमात्मा यही कृपा आपको मिल गई, क्या मिल गई, परमात्मा की कृपा आपके रूप हुई, कुछ आप कर पाते हो सन्मार्ग में चलने लगो यही पर्याप्त है, समझ आया, सत्कर्म कुछ किया कभी नहीं किया था, एकादशी व्रत कोई नहीं करता था अभी करता है, करने लग गया, कुछ सत्कर्म किया कुछ सत्संग किया जप ध्यान थोड़े किया तो क्या मिला, परमात्मा की कृपा मिल गई, कृपा हो गई आपके ऊपर, अभी तक कुछ नहीं किया था बर्बाद हो गया, इस जन्म के कितने जन्म चलेगी, अभी थोड़े परमार्थ मार्ग में चला, यही परमात्मा की बड़ी कृपा है, यही कृपा है, इतने करके आगे बढ़ो, मिला बहुत मिल गया, क्या मिला क्या मिला, वो बहुत परमात्मा की कृपा होने के बाद भी यदि हम कहे फल चाहिए परमात्मा कहे देखो मैं तो उसको दर्शन देना चाहता था, ये कहता है कि फल हमको मिले, चलो उसको एक किया दस फल दे दो, दस फल दे दो, हो खुश होता है हमको दस फल मिल गया, किन्तु परमात्मा देखता है बच्चे जैसे नाचते हैं ना, सब टफी चकलेट दे दिया तो बड़े खुश हो गया, ठगने के लिए दे देते तो खुश हो गया, इसी प्रकार परमात्मा दे तो खुश हो गया, तो ये नहीं चाहिए, परमात्मा की कृपा हो गई, यदि सत्कर्म कुछ हुआ कुछ सदुपयोग धन का सदुपयोग हुआ समय का सदुपयोग हुआ कुछ जप ध्यान किया समझे यही परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, ऐसे लोग भी देखते हैं कहीं धन का उपयोग करते हैं उसके बाद बड़े ये होता है कि बड़ी कृपा आपकी कृपा परमात्मा की कृपा, क्योंकि हम कब से सोते नहीं करते नहीं कर पाते, सत्कर्म कोई ऐसे कितने लोग देखे, व्रत कहते हम एकादशी करेंगे, सोच रहे थे कि नहीं करते थे, अभी करने लगे, बड़ी कृपा होगी परमात्मा यहाँ पे कृपा होगी। और प्याज रसन कोई कहते हम कभी से सोते थे छोड़ने छोड़ने के लिए, क्योंकि कभी नहीं छोड़े, आपने हमको छोड़ा दिया, बड़ा अच्छा हुआ। हाँ ये प्रसंग वसत इसलिए कहते हैं जो एकादशी व्रत नहीं करते शुरू कर लो, प्याज रसन खाते तो छोड़ लो, बहुत खा लिया, छोड़ कर देखे एक साल दो साल तीन साल के बाद देखो क्या आनंद मिलता है। प्याज रसन छोड़ने में तो थोड़े समय भी उसका लाभ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को अर्पण करके शुद्ध भोजन प्रसाद पाना ये भक्त का लक्षण है। और अपने बनाकर खाएगा दूसरे पचनते थे तो हम पापा ये पचन थे आत्म कारणार्थ, अपने लिए पकाकर खाते तो पाप ही खाते है पकाते हैं। तो जो प्याज रसन खाते छोड़ने न खाए, जो एकादशी व्रत नहीं करते आज से शुरू कर देना है। शास्त्र विहित कर्म बताया, सात जो कर्म कहा सत्कर्म। हाँ वो जब तो एक तो शास्त्रीय कर्म है ये मुख्य, उसके बाद कुछ करते कर्म, पिता माता की सेवा करते, बड़े की सेवा करते, छोटे की सेवा करते, घर में कुछ करते, कहीं भी झाड़ू पोछा लगाते, कुछ भी करते, उसको भी अर्पण करे ईश्वर को, उसके बाद उसकी भी अर्पण करे। एक ही में सारे ब्रह्मांड परमात्मा का है, ईश्वर का घर है। कहीं भी साफ करते तो ईश्वर का वो उसका अधिकार ईश्वर है या नहीं? यहाँ प्रेमपुरी आश्रम आते हैं, यहाँ का मालिक खाली यहाँ का ट्रस्ट प्रेमपुरी जी भक्त को जो रुपया दे हुई है परमात्मा अधिकारी है। बोलो यहाँ यदि कोई सेवा करेगा तो परमात्मा की सेवा नहीं होगी? हाँ रास्ता में जाते समय कहीं छोड़ कर दिया, रास्ता क्या परमात्मा का उसमें कोई अधिकार है या सरकार का है? बोलो ये परमात्मा तो सबके सरकार है। तो वहां भी कर दिया परमात्मा की सेवा होगी? रास्ता में चलते समय भी कोई अपरिष्कार करेगा तो परमात्मा का विरोध होगा? हैं साफ कर दिया तो परमात्मा की सेवा होगी? रास्ता में किसी दुखी का दुख दूर करने के लिए कुछ कर लिया वो परमात्मा की सेवा होगी? तो उस समय परमात्मा अर्पण कर लिया, ये नहीं सोचे कोई हमको बाबा करे या उसको अपेक्षा कर तुमने हमें तेरे लिए इतने किया तुम हमारे क्या ऐसा कर दो। अभी नहीं, किसके लिए कुछ किया है आगे कुछ नहीं करता, कभी नहीं कहना मैंने इतने किया तुमने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं आपने क्या सोचा ये नहीं किया। यदि आपके द्वारा कुछ हुआ तो अच्छी बात है, उसको केवल है अपने पुत्र आदि है ऐसा नहीं करते, उसका कल्याण के लिए उस करते। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए कि किससे कुछ उपकृत है तो उपकार को मानना चाहिए, ये इतना शिक्षा देनी होती, किन्तु अपने नहीं सोचे मैं इतने उसके लिए क्या हूं हम कैसे करता है कुछ नहीं, दूसरे से अपेक्षा ही नहीं रखना। पर सब परमात्मा के लिए क्या, जो कुछ किया है आप अपने लिए क्या है, दूसरे नहीं, दूसरे लिए क्या ना, आप अपने लिए क्या समझो, दूसरे लिए क्या, दूसरे से कुछ मिला ये भावना नहीं रखे, अपने लिए क्या अथवा परमात्मा के लिए क्या, कुछ भी करते समय परमात्मा को अर्पण करना। इतने निषिद्ध कर्म कोई तर्क में ये कोई कहते हैं पाप कर्म करेंगे ईश्वर को अर्पण कर दिया, किंतु पुण्य कर्म को अपने लिए इसका फल हमको चाहिए ये नहीं चलेगा, सब अर्पण करें, कहीं भी कुछ करें परमात्मा की सेवा से भावना करके, सारे ब्रह्मांड परमात्मा का घर है, परमात्मा घर है, परमात्मा मालिक है, उनकी सेवा जहां कुछ करे तो परमात्मा की सेवा होती, ये भावना करे करना, यही तो श्रेष्ठ भावना सबसे। हाँ भूख तो आपको लगती है आपके अंदर ईश्वर है या नहीं है? हाँ तो पहले उनको थोड़ा पूजा करके फिर खाओ, उनकी पूजा करो, उनको अर्पण करो, पहले भोजन करते समय यही सोचे परमात्मा अंदर है इसलिए पहले परमात्मा को अर्पण करके फिर बाद में भोजन करें। इस समय नहीं सोचे मैं हमको भूलते हम खाएंगे, वहां तो परमात्मा के रख दिया इलाची दाना केला। ये इलाची दाना है कि ना, नाम तो इलाची है, उसको स्वयं में नहीं खाएंगे, कोई प्रसाद देगा तो नहीं खाएंगे, कोई देगा तो रख देगा खाएगा, बाकी वहां कहीं रख देंगे। ये भगवान के भोग लगाते है, कोई मिश्री रख देता है, और कुछ अधिक रखते कुछ भी रख दिया वो नहीं, जो भोजन करना है परमात्मा को अर्पण करना, बनने बनाते समय शुद्ध बनाना, जूठा नहीं हम तो खाएंगे, जूठा हुए तो क्या हो गया, ऐसा नहीं, पवित्र रहेगा, अर्पण करना, उसके बाद सेवन करना। श्लोक बोलो योगस्थ ये समत्व बुद्धि युक्त कर्म बहुत श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। बाकी तो कर्म सब करते हैं, उसके अपेक्षा आगे कहते किस प्रकार कितने कर्म कितने श्रेष्ठ है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दो प्रकार कर्म है, के फल की इच्छा से कोई करता है और एक कर्म कोई करता है समत्व बुद्धि युक्त होकर के, सिद्धि असिद्धि में समान होकर के ईश्वर आत्मबुद्धिया करता है, फल इच्छा नहीं करता है। दो प्रकार कर्म हुआ, ये दूरे ने ही अवरम कर्म, एक बुद्धि योगात बुद्धि योग हो गया समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि युक्त होकर के जो कर्म है उसी कर्म के अपेक्षा अन्य फल इच्छा से जो कर्म किया जाता है वो कर्म निकृष्ट है। वर का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। न वर इति अवरम, निकृष्ट हो गया अवरम। दूरे न ही अवरम, ही असिद्ध दूर ही अवरम कर्म, किसे अवर? बुद्धि योगा, बुद्धि योग समत्व बुद्धि युक्त कर्म क्या विषया फल इच्छा के साथ जो कर्म किया जाता है वह कर्म क्या है? अवरम निकृष्टम। कितने निकृष्ट? कहां अत्यंत सदाया दूरेण, अवर तो निकृष्ट है किन्तु दूरेण निकृष्ट। निकृष्ट कोई उन्नीस से बीस से उन्नीस पूरा कम है ना? नहीं, बीस के अपेक्षा उन्नीस कम है ना? नहीं, ग्यारह हजार के अपेक्षा दस हजार कम है? नहीं है, किन्तु पांच रुपया ग्यारह हजार के अपेक्षा ग्यारह रुपया कम है? कि कम है ना? बहुत है, बहुत कम है, बहुत कम, अति कम है। इसी प्रकार दूर है नहीं अवरम कर्म, बहुत निकृष्ट, अत्यंत निकृष्ट है। खाली निकृष्ट कौन से नहीं, भगवान यहां कहते निकृष्ट कौन से नहीं होता है। दूर है नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा, समत्व बुद्धि हो तो कर्म की अपेक्षा फल इच्छा से कर्म किया जाता है वो कर्म अत्यंत निकृष्ट है। भक्त को ऐसे कर्म करना है? हाँ, भक्तों को ऐसे थोड़ा से भी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। थोड़ी सी इच्छा फल की रखे तो बहुत निकृष्ट है, उसको भगवान उसके ओर देखेंगे तो क्या करेंगे? वो तो कुछ नहीं है, क्या भक्त मानिए। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान कहे धनंजय बुद्ध शरण मन इच्छा, समत्व बुद्धि योग में शरणों को प्राप्त करो, उसमें ही सांख्य बुद्धि अथवा योग विषय बुद्धि में योग बुद्धि परमात्मा अर्पण करके करो, अथवा यदि कर्म अंतकोण शुद्ध हो जाता है ज्ञान मार्ग में चलो, इसमें आश्रय करो, फल इच्छा को छोड़ो। फल इच्छा से कर्म करना ये तो बहुत निकृष्ट है। पहले तो जो बाहर भाग रहा है, निषिद्ध कर्म कर रहा है, शास्त्रीय मार्ग में प्रभुता नहीं होता है, उसको लाने के लिए हमने बताया वेद में विधान किया गया कर्म करो कर्म करो स्वर्ग प्राप्त करो। फल इच्छा से कर्म करने के लिए कहा गया, किसके लिए? जो बहिर्मुख निषिद्ध कर्म कर रहा है उसको अंतर्मुख करने के लिए। श्रुति भगवती अपने माता से भी हितकारिणी है, किसी प्रकार कल्याण करने के लिए पहले सकाम कर्म में लगा देती है, बाद में कहते ये कर्म क्या विषय बुद्धि युक्त कर्म निष्काम कर्म उत्कृष्ट है, वही करो, अंत में उसी के उसमें शरण में आयो, उसके शरण में अथवा ज्ञान मार्ग में जब अंतगुण शुद्ध हो जाता है ज्ञान मार्ग में आश्रय करो अन्विच। और जो फल हेतु, फल के हेतु कौन होता है? जो फल इच्छा से कर्म करता है वो कर्म फल का हेतु होता है। जो फल हेतु वह कृपणा, फल चाहने वाले कृपण है, कृपण का अगर बिल्कुल निंदा की गई निकृष्ट नीचे कृपण है। कृपण तो कंजूस को कहते हैं, जो कंजूस है बहुत होने पर भी कुछ खर्च नहीं करता है, कंजूस अपने खाने के लिए भी खर्च नहीं करता, किसको देने का प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, ये कहते कृपण। वेद में आया जो अज्ञानी है उसको कृपण शब्द से कहा। आत्म साक्षात्कार करे परमानंद स्वरूप अपना है, इसको छिपा कर करके मैं मर गया दुखी होकर मर गया, वही कंजूस। अपने पास बहुत रुपया है, दूसरे को देना पड़ेगा, ऐसे कहता मेरे पास कुछ नहीं, फटे फटे कपड़ा पहनकर मेरे पास कुछ नहीं अपने को, ये कृपण का। इसी प्रकार परमानंद रूप धन आपका है, इसको छिपा करके मैं दुखी मैं मर गया ये कहते तो कृपणा कंजूस कहा और ज्ञानी को कहा फल है तो कृपणा नीचे करे निकृष्ट है बिल्कुल यो भी थे तद अक्षर कार्य का अभिदित्व अस्मालुकात प्रीति सकृपण यजुर्वेद मंत्र है। अर्थात फल इच्छा से जो कर्म करता है वो अत्यंत निकृष्ट है। कौन जो शास्त्रीय कर्म फल इच्छा से करता है वो अत्यंत निकृष्ट और जो निषिद्ध कर्म करता है उसका विचार तो छोड़ो। निषिद्ध कर्म करने वाले तो पापी है वो इच्छा से क्या वो तो पापी तो वो तो विपरीत है। किंतु शास्त्र भी तो कर्म करता है किंतु फल की इच्छा से वह भी अत्यंत निकृष्ट है। हाँ श्लोक बोलो समत्व बुद्धि होते हुए कर्म करना चाहिए और अपना धर्म अपना जो शास्त्र भीत कर्म जिस वर्ण में जिस आश्रम में है अपना धर्म अनुष्ठान करे उसे क्या लाभ होगा आगे कहते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। यह बुद्धियुक्त यह उभे सुकृत दुष्कृते जहाति यहां बुद्धियुक्त समत्व बुद्धि से युक्त समत्व बुद्धियुक्त का था कर्म करने पर उसके फल मिला नहीं मिला उसमें बराबर इसकी इसका विचार नहीं करता उसकी इच्छा नहीं करके अपने शास्त्र भीत कर्म करता है वह क्या करता है। उभे सुकृत दुष्कृते जहाति इसी लोक में पुण्य पाप कर्म दोनों को छोड़ देता है। कैसे छोड़ देगा पहले यदि निष्काम कर्म करता है तो अंतकोण शुद्धि होगी। निष्काम कर्म करेगा तो अंतकोण शुद्धि होगी। अंतकोण शुद्धि के बिना ज्ञान हो जाता है अंतकोण शुद्धि होने से ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति होने पर ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात सारे कर्म को छोड़ देता है। जो समत्व बुद्धि से युक्त पुण्य पाप क्या छोड़ देता है छोड़ देता है मतलब ज्ञान से नष्ट हो जाता है। तस्माद् योगाय उज्जस्य समत योग के लिए अपने धर्म करो निष्काम होकर करो ईश्वरार्पण करके अपत्य कर्तव्य करो। तस्माद् योगाय युज्यस्व योगाय योग के लिए कौन सा योग समत्व योग। समत्व योग क्या है सिद्धि असिद्धि में बराबर है क्या मिला क्या नहीं मिला विचार छोड़ करके अपने कर्म करो। योग कर्मसु कौशलम ये जो समत्व योग है ये कर्म में कौशलम कुशलता बुद्धिमत्ता जो कर्म बंधन का कारण जो कर्म बंधन का कारण वही कर्म मोक्ष का कारण बन गया। कैसे कौशल देखो कर्म करते हैं तो कर्म फल प्राप्त करता है तो संसार को प्राप्त करता है कर्म से फल मिलता है। कर्म है कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या से विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्म से बंधन है ज्ञान से मुख्य है इसे यति सन्यासी कर्म नहीं करते हैं। कर्म करने के लिए कहा कर्म बंधन कर्मणा बंधन कहा कर्मणा बद्धते जंतु किंतु कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषे सतम समा कर्म करते हुए ही जीवित रहे सौ साल तो जीवित सौ रहना चाहते किंतु कर्म करते हुए ही यहां देखो कुर्बन वही कर्माणी में सज्जी जीवित से सतन समा सौ वर्ष जीवित रहने के लिए विधान किया गया ये विधान नहीं। सौ वर्ष जीवित रहना चाहते तो सब उसका अनुवाद किया किन्ने पूछा था अनुवाद श्रुति आपने पूछा था अनुवाद श्रुति किसने पूछा था आपने पूछा था सौ वर्ष जीवित रहने के लिए सौ जीवित रहना चाहते उसका अनुवाद करके कुर्वन एव है कर्मण, कर्म करते हुए ही ये विधान किया। और कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, जीने की इच्छा करे, श्रुति विधान करने से जीने की इच्छा करेंगे, नहीं तो मरने की इच्छा करेंगे नहीं। सब लोग अधिक जीवना चाहते, जो सो जीवित रहना चाहते हैं, क्या कैसे जीवित रहना चाहते करें, कुर्वन एव कर्मणि, कर्म करते हुए ही। देखो यहां क्या, कर्म बंधन का कारण, श्रुतिगति कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करते ही जीवित रहे, तो कर्म बंधन का कारण ठीक है व्यास जी कहते, और कौन श्रुतिगति कर्म करते रहे। कर्म कौन सा कर्म करना है, तत्कर्म यन्न बंधाय, या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति का साधन, कर्म वही है जो कर्म बंधन का कारण नहीं होगा। तत्कर्म यन्न बंधाय, तो श्रुति जो कर्म करने के लिए कहती वही कर्म करे जो बंधन का कारण नहीं हो। ऐसा कौन सा कर्म है जो बंधन का कारण नहीं होगा, हैं? ऐसा कर्म है जो बंधन का कारण, तो कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म तो बंधन है, पुण्य पाप कर्म दोनों, और ईशावास्यम से कुर्वन एव है कर्म, कर्म करते हुए, और कर्मणि अधिकार से भगवान बार बार कहते कर्म करो, तत्कर्म यन्न बंधाय, हुई कर्म ही जो बंधन का कारण नहीं। भगवान गीता में स्वयं बताएंगे, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ में विष्णु परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो यज्ञार्थ कर्म, उससे भिन्न कर्म यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, वो कर्म बंधन का कारण। परमात्मा अर्पण के लिए जो कर्म करते हैं वो बंधन का कारण नहीं, उसे भिन्न जितने कर्म है वह बंधन का कारण। निषिद्ध कर्म तो है ही बंधन का कारण, शास्त्र भी तो कर्म भी यदि फल इच्छा से करेगा तो बंधन का कारण होगा, परमात्मा अर्पण करके करेगा उसको छोड़ कर बाकी जितने कर्म सब बंधन का कारण। तत्कर्म यन्न बंधाय, तो बंध के लिए नहीं कर्म कौन सा है, यज्ञार्थ कर्म, ईश्वरार्पण विद्या कर्म, ईश्वरार्पण बुद्धा कर्म करने के लिए कहा गया। कुरुव नैव कर्माणि में भी वही कर्म करने के लिए विधान किया गया, कौन सा कर्म, यज्ञार्थ कर्म, ईश्वरार्पण बुद्धा कर्म। क्या फल, फल क्या चाहिए, ईश्वर हमारे पर संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, नहीं कुछ ये भी भावना नहीं करे, यही संतुष्ट है परमात्मा, क्या आपके द्वारा कुछ कर्म हो गया, यही परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बहुत है, उसके बदले फिर नहीं मांगो, यही ही कर्म करना है। तो पुण्य पाप कर्म जो समत्व युक्ति से युक्त, समत्व युग से युक्त होकर कर्म करता है, पुण्य पाप दोनों ज्ञान प्राप्ति करके छोड़ देता है, इसे योगायुज्यस्य योग कर्म सुकौशलम, योग जो बंधन का कारण है ये कौशल हो गया, वही कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन हो गया, सारे कर्म ध्वंस का कारण हो गया, जो कर्म संसार का कारण बंधन का कारण, वही कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिया करने से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा संसार निवृत्ति का कारण हुआ, बंधन का कारण कर्म बंध निवृत्ति का साधन हो गया, क्या करने से, ईश्वरार्पण बुद्धिया करने से। किन्तु के ही से होता है, थोड़े से कोई कुछ करता है तुरंत तो उसके फल, फल इच्छा से करते हैं लोग, जप करते है, दान करते है, उपवास करते है, व्रत करते है, कुछ उसके बदले में फल, मोक्ष तो चाहिए, भोग भी चाहिए, भोग भी चाहते हैं, भोग इच्छा नहीं करके निष्काम होकर करने के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक बोलो, बुद्धि युक्त अब इसलिए क्या करना चाहिए आगे बताते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। मनीषिणः मनस, मनीषा है बुद्धि, मनीषा बुद्धि वाले, मनीषीण बुद्धिमंत बुद्धि वाले। कौन बुद्धि वाला है? जो सकाम कर्म करता है अथवा निष्काम कर्म करने वाले। इसलिए क्या मनीषीण कौन? बुद्धि युक्ता। किस बुद्धि से युक्त? समत्व बुद्धि से युक्त मनीषीण। वो क्या करते? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजन फल का त्याग करके, कर्मजन फल का त्याग, पहले से इच्छा ही नहीं रखते है। तो क्या लाभ होता है? जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। कौन गच्छन्ति? कर्ता कौन है? बुद्धियुक्ता मनीषिण। समत्व बुद्धियुक्त जो मनुष्य बुद्धिमान, पहले से कर्म फल इच्छा नहीं रखते है, ऐसे बुद्धियुक्ता मनीषिण कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजन फल छोड़ देते है, फल की इच्छा नहीं रखते है। छोड़ करके, छोड़ने से क्या होता है? अंतकोण शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान उनसे मुख्य होता है। तो जन्म बंध विनिर्मुक्त, जन्म जन्म आदि बंध से रहित होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति। आमे रोग विप्र दुख तदरहित पद, अनामय पद तो परम पद ब्रह्म स्वरूप, उसको प्राप्त कर लेते हैं। यही कर्म से कौशल बताया, निष्काम कर्म करने पर, अभ्यास करने पर, कुछ भी करते समय थोड़े उसके बदले में कुछ चाहिए ऐसा भावना नहीं। अब घर में सामान्य से वहीं से आरंभ करे, कुछ किया उसके अपेक्षा बदले में कुछ चाहिए था नहीं, लोक में कुछ किया उसके बदले में कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा के लिए कुछ करे, कुछ किया परमात्मा को अर्पण करना, और परमात्मा सर्वत्र है, कहीं कुछ हुआ तो सत्कर्म हुआ तो परमात्मा के लिए किया, परमात्मा ही सब कुछ है। अपने पास सामर्थ्य तो परमात्मा ने दिया, परमात्मा की कृपा से कुछ सत्कर्म हो गया, वही प्रसन्नता तो बहुत ही बड़ी बात है। निष्काम होकर कर्म करने से वो संतगुण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति होकर के जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामय पदम गच्छन्ति। अनामय सर्व उपद्रव संयम शून्य प्राप्त करते, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते, मुक्त हो जाते हैं। श्लोक बोलो। अब यहाँ समत्वम योग उच्यते, योग शब्द आया, योगे तु इमां शृणु, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे तु, योग कर्म योग का योग कौन सा कर्म योग हुआ? समत्व बुद्धि युक्त कर्म, योगस्थ कुरु कर्माणि, यही समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करो, ईश्वरार्थम ईश्वरार्पण बुद्धिया, ये कहा। योग शब्द यहाँ दो है, ज्ञान योग और कर्मयोग। उपाय है कर्मयोग और उपेय है ज्ञान योग। कर्म निष्काम कर्म करने से उसके द्वारा अंतकोण शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति। अच्छा, अभी अभी जो बताया था आपको, अपर में होगा तो पहले विसर्ग होगा, बाद में ओ रहेगा तो विसर्ग होगा, होगा नहीं? स्वरवर्ण पर है तो विसर्ग नहीं होगा। अच्छा, ई के बाद स्वरवर्ण रहेगा तो क्या होता है मालूम है? ई रहेगा, ई के आगे स्वरवर्ण रहेगा तो क्या होता है? ही आह य हो जाता है, ई को य हो जाता है। सूत्र है इको यणची पाणिनिवासी सूत्र है, क्या सूत्र बोलो? इको यणची एक ई उ री ली चार वर्ण, इसको यण हो जाएगा, य व र ल, पर में अच हो तो अच के में अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये वर्ण रहेगा। तो आप एक चीज में बताता हूँ, देखो सब लोग हरिओम हरिओम करते हैं ना, हरि शब्द का प्रथम एकवचन क्या होगा? हरि ही। आगे ओम में क्या है? ओ है, ओ के पहले विसर्ग होगा, तो हरिओम बोलते सारी में विसर्ग बोलते हो क्या या नहीं बोलते हो? ना आप हरिओम बोलते, सब लोग हरिओम कहते ना, हरिओम में ओ के पहले विसर्ग बोलते या नहीं बोलते हो? नहीं बोलते। बहुत अच्छा, विसर्ग नहीं होगा। तो हरि में ई बोलते हो, ई के आगे ओ बोलते हो, बोलो हरि के आगे ओ बोलते हो ना, विसर्ग चला गया, ई रहा तो ई के आगे ओ उच्चारण से होगा। हरि कौन सा विभूति है? हरि विसर्ग नहीं तो खाली हरि संस्कृत शब्द है, संस्कृत में हरि ही बनेगा, विसर्ग होगा, नहीं तो हरि रे पर रहेगा, संबोधन का हरे हो जाएगा। हरि ई के आगे ओ रहेगा तो क्या लगेगा, क्या सूत्र लगेगा? एक हरियो हो जाएगा, क्या बनेगा? हरिओम। हरि शब्द असंस्कृत है, हरि शब्द संस्कृत नहीं है, हरि के आगे ओम संस्कृत में नहीं बनेगा, अप ये मृत भाषा हो जाए, अपभाषण हो जाएगा। हरि के आगे ओम अशुद्ध है, ये चलता है। ऐसे बहुत बड़े विद्वान से, बहुत बड़े बड़े विद्वान से पूछा, ये अशुद्ध है कैसे? कोई बता दिया ये वेद परंपरा, वैदिक वैदिक। फिर बाद में कहा देखो वेद में है क्या, जो लोग वेद मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र पाठ करते समय एक घन पाठ जटा पाठ ही से होता है, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह बनाने, मृत्यु समृत्यु मृत्यु समृत्यु मृत्यु सब मृत्यु समृत्यु आपनोति मृत्यु समाप्नोति मृत्यु समाप्नोति, तीन तीन बार आगे पीछे करके पाठ करते हैं। उनसे पूछा गया जो घन पाठ जटा पाठ करने वाले अभी पंडित है, मंत्र में तो ओम सपा देते हरिओम लिख देते है, आप बोलो घन पाठ जटा पाठ करते समय वेद मंत्र पाठ करते समय हरिओम ओम इसके साथ है? नहीं है, वेद के अंतर्गत तो नहीं है। इसे वेद में है इसको नहीं माना, पुस्तक में कोई छपा दिया और मंत्र के अंतर्गत तो नहीं है। कहीं इसे लिख देते छपा पुस्तक बहुत मिल जाता है, हरिओम तत्सत करे पढ़ देते हैं, हरिओम तत्सत कहीं नहीं, यहाँ गीता में हरिओम तत्सत है क्या? ओम तत्सत ही थी, हरि नहीं है, संस्कृत में नहीं है। कभी यदि है तो गलत है, आजकल छपा देते हैं हरि के आगे ओम अशुद्ध है, इसलिए हरि छोड़कर केवल ओम बोलो। ये नहीं सोचा हरि शब्द से कोई द्वेष रहता नहीं, असंस्कृत शब्द है, सब लोग बोलते हैं किंतु अशुद्ध है। हिंदी में कहीं बोलना संस्कृत शब्द मालूम है तो, अभी तक तो संस्कृत चल रहा था, जो संस्कृत में अशुद्ध है कहीं मैं तेलुगु बोल रहे हिंदी में अशुद्ध हो गया तो फिर दूसरे भाषा का नाम ले लेंगे। हिंदी में क्यों बोलना, भगवान का नाम लेते समय असंस्कृत शब्द नहीं संस्कृत शुद्ध शब्द बोले शुद्ध, इसलिए ओम से बोलो हरि छोड़ दो, नहीं तो क्या बोलना चाहिए? हरि रोम, हरि रोम, हरि ओम, नहीं तो हरे संबोधन हो जाएगा नहीं तो इसलिए हर ओम हो, नहीं तो ये केम का हुआ है दंडी स्वामी जी महात्मा लोग ओम हरे ऐसा कहते हैं। काशी में रहते पढ़ते समय के दंडी स्वामी जी बोलते थे, मैं पूछा था, वो करपाती का नाम लिया था, बोले स्वामी जी से बोलते थे, उस समय हम इतने विचार नहीं किए थे, अर्थात तो उनको भी इसी के कारण हरिओम शब्द अशुद्ध होगा तो क्या कहते ओम हरे, हरि का संबंधन हरे हो जाएगा, ओम हरे ओम हरे, नहीं तो हरे छोड़ दो ओम से कहो, तो या क्या करना चाहिए ओम हरे कहो, नहीं तो हरि रोम, नहीं तो हरि छोड़कर ओम तत्सदिति, इसे सर्वत्र जो हरि है ओम विसर्ग भी कोई करते हैं, अभी तो मना कर दिए क्योंकि पहले विसर्ग नहीं होता बता देने से, सर्व मना कर दिए, नहीं तो बोलते समय ओम नमो गुरुभ्य हरि ओम ऐसे कहते ना हरि ओम विसर्ग बोलते, विसर्ग अशुद्ध है, विसर्ग के बिना भी अशुद्ध है, हरि ओम है, ओम से शुरू करना हरि को छोड़ देना। हमारे आश्रम में कैलाश आश्रम में वेद पाठ करते तो अंत में ओम प्रारंभ में ओम हरि नहीं कहते, अब कहेंगे तो हरि रोम चले हरि रोम, नहीं तो ओम हरे, वो हरि छोड़ करके बोले, सो पुस्तक में लिखा जाने से भी बड़े कोई बोलने पर भी अशुद्ध है, ध्यान रखना। बड़े बड़े विद्वान से परामर्श किया है, हम जानते हैं, और बड़े बड़े विद्वान वेद पाठ करने वाले से भी बहुत परामर्श होकर के हाँ ये होगा हरि ही विराम पुनः विराम हरि ही ओम हरि ही विराम कर दो फुल स्टॉप पुनः विराम उसके बाद ओम तत्स्य दीति तभी चलेगा, अरे मिलाकर हरि ओम बोलते हो गलत है। हाँ इसलिए बता दिया यहाँ ये अशुद्धि है, कुछ कुछ स्थल पर कहा, बड़े बड़े विद्वानों के साथ परामर्श कर बताया और बड़े बड़े विद्वानों को बताया मानते हैं। अब जितने हो सकता है अशुद्धि है तो उसको दूर करके शुद्ध मार्ग में आना चाहिए, दुराग्रह हटकने कोई जरूरत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, जलना सत्शुद्धि को त्याग करना, अशास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके शास्त्रीय मार्ग पर आना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो
वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।